आगे सबक देखिए भाई, बाबुल कस्मी व इदा कान लि रजुलि मरातानि हुर्रतानि फअलैहि अन यादिला बैनहुमा फिल कस्मी बिकरैनि कानता औ सय्यिबैन औ इहदाहुमा बिकरं वल उखरा सय्यिबा लिकौलिही अलैहि सलामु मन कानत लहुम रअतानि व माल इला इहदाहुमा फिल कस्मि जाअ यौमल क़ियामति व शिक्कुहु माइल। وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في القسم بين نسائه وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك। गुज़श्ता सबक में आपने मसला पढ़ा था कि अगर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान होकर दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम आ गया, यानी उसका अब यहीं रहने का इरादा है, तो इस सूरत में खुद ब खुद इन दोनों के दरमियान जुदाई वाकई हो जाएगी, इसलिए क्योंकि इंदल अहनाफ तबायुन दार हकीकतन भी हो और हुक्मन भी हो तो इससे जुदाई आ जाती है। तबायुन दार हकीकतन होने का माना यह है कि मियां बीवी दोनों अलग अलग मुल्क में हैं, तो ये देखो ये तबायुन दार है हकीकतन, हकीकतन दोनों अलग अलग मुल्क में हैं, और नीस तबायुन दार हुक्मन का माना यह है कि वो फिर वहीं पर रहने का इरादा कर ले और वापसी का इरादा छोड़ दे, वापसी का इरादा न हो भाई, तो अब हुक्म भी यही लगाया जाएगा कि तबायुन दार है यहां पर, तो तबायुन दार हकीकतन भी हो गया और तबायुन दार हुक्मन भी, तो जब भी तबायुन दार हकीकतन और हुक्मन पाया जाएगा तो उससे मियां बीवी के दरमियान जुदाई आ जाएगी। जबकि इमाम शाफई रहमहुल्ला फरमाते हैं कि तबायुन दार ये जुदाई का सबब नहीं है, इसलिए क्योंकि हरबी भी अमान लेकर यहां आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, और इसी तरह मुसलमान भी अमान लेकर दारुल हर्ब जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और उनके निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता, तो वो फरमाते हैं मालूम हुआ तबायुन दार से जुदाई नहीं आती, हां दार की वजह से सिर्फ विलायत मुनक़ते हो जाती है, यानी इंसान अपनी जान और माल का मालिक नहीं रहता, तो सिर्फ विलायत मुनक़ते होती है और निकाह पर असर नहीं पड़ता, बल्कि जुदाई जो आती है वो कैदी बनाने की वजह से आती है, इसलिए क्योंकि कैदी बनाना ये तकाजा करता है कि वो जो कैदी है उसको खालिस होना चाहिए कैद करने वाले के लिए, और कैद करने वाले के लिए वो कैदी खालिस तभी हो सकता है जब उसमें किसी का हक ना हो, हत्ता के खावंद का भी हक ना हो, उसका निकाह टूट चुका हो, निकाह मुनक़ते हो चुका हो, फिर इसके अंदर खावन का हक नहीं है, तो अब यह खालिस कैद करने वाले के लिए हो गया, तो और इसी वजह से वो फरमाते हैं कि जब किसी को कैदी बनाया जाता है तो उस हरबी के जिम्मे अगर कोई दुयून भी थे तो वो भी सारे साकित हो जाते हैं, क्योंकि अगर दुयून उसके जिम्मे होंगे तो फिर तो वो खालिस कैद करने वाले के लिए ना होगा भाई, बल्कि उसमें तो वो कर्ज खाहों का भी हक आ जाएगा, तो उनके नजदीक कैदी बनाना यह इल्लत है जुदाई की, जबकि हमारे नजदीक तबायुन दार हकीकतन और हुक्मन हो यह इल्लत है जुदाई की। तो हम जवाब देते हैं कि जो तबायुन दार है हकीकतन और हुक्मन, इसकी वजह से निकाह की मसलहतों का इंतजाम नहीं हो सकता। निकाह की क्या मसलहतें हैं कि इसकी वजह से एक नया घर आबाद होता है और नीस कसरे शहवत होती है, यानी शहवत का भी इलाज हो जाता है, और नीस इससे औलाद हासिल होती है, औलाद की तरबियत करना पड़ती है, तदबीर मंजिल करना पड़ती है, यानी घर का इंतजाम चलाना पड़ता है, और इसी तरह इंसान को जिहाद भी नफ्स का ज्यादा मौका मिलता है, तो ये सब निकाह के मकासिद हैं। और जब मियां बीवी दोनों का दार अलग अलग है हकीकतन भी और हुक्मन भी, तो अब निकाह की मसलहतें हासिल नहीं हो सकती। मालूम हुआ तबायुन दार हकीकतन और हुक्मन हो तो यह मुनाफिए निकाह है, निकाह तो अपनी जात की वजह से नहीं मशरू, निकाह तो अपनी मकासिद के लिए मशरू है और वो मकासिद यहां हासिल नहीं हो सकते। तो मालूम हुआ तबायुन दार हकीकतन भी हो और हुक्मन भी हो तो ये मुनाफिए निकाह है। ये इसी तरह है जैसे महरमियत, महरम हो ना, ये निकाह के मुनाफी है। तो इसी तरह जैसे महरम होना निकाह के मुनाफी है, तबायुनेदार हकीकतन और हुक्मन वो भी निकाह के मुनाफी है, लिहाजा इसकी वजह से जुदाई आ जाएगी। जैसे महरमियत की वजह से जुदाई आ जाती है, इसी तरह तबायुनेदार हकीकतन और हुक्मन की वजह से भी जुदाई आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि ये तबायुनेदार से जुदाई आएगी, और जो कैदी बनाना, कैदी बनाना ये तो इसकी वजह से तो मिलकर रकबा हासिल होती है, इंसान उस कैदी की जात का मालिक बन जाता है, उसका वो गुलाम या बांदी बन जाएगा, इसे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि मिलकर रकबा के होते हुए आका अपने गुलाम या बांदी का निकाह करवा सकता है। मालूम हुआ मिलकर रकबा इब्तिदाए निकाह के मुनाफी नहीं है, तो फिर ये बकाए निकाह के भी मुनाफी नहीं होगा भाई। तो ये कैदी बनाना खरीदने की तरह है, और गुलाम या बांदी को खरीदा जाए और उनका निकाह हो चुका हो तो उससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। और नीज आपने कहा कि वो जो कैदी है वो खालिस कैद करने वाले के लिए होना चाहिए, तो उसका जवाब हम देते हैं कि हां, कैदी बनाने से वो खालिस हो जाएगा कैद करने वाले के लिए, लेकिन माल होने के एतबार से, मिलके निकाह के एतबार से नहीं, क्योंकि ये कैदी बनाना ये माल होने के एतबार से उसमें असर करेगा, और वो माल यानी वो गुलाम या बांदी खालिस इसके लिए हो जाएगा कैद करने वाले के लिए, इसमें किसी और का हक नहीं रहेगा। लेकिन मिलके निकाह के अंदर कैदी बनाना असर नहीं करता, जैसे गुलाम या बांदी को खरीदना ये मिलके निकाह में कोई असर नहीं करता भाई। और बाकी इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने मुस्तामिन का मसला जिक्र फरमाया था कि मुस्तामिन पर कियास किया था कि देखो मुस्तामिन एक दार से दूसरे दार में जाता है और उसके निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता, तो तबायुने दार है लेकिन निकाह पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो हम जवाब देते हैं कि वहां उसका वापसी का इरादा होता है, तो तबायुने दार हकीकतन तो हुआ लेकिन हुक्मन न हुआ, लिहाजा इसलिए निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद मसला जिक्र किया साहिब हिदाया ने, अगर कोई औरत दारुल हर्ब से हिजरत करके दारुल इस्लाम आ जाए तो जुदाई तो वाकई हो जाएगी, ये तो बतला दिया, लेकिन क्या उस औरत पर इद्दत भी वाजिब होगी या नहीं? तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस औरत पर इद्दत वाजिब नहीं है, ये फौरन आगे निकाह कर सकती है, जबकि साहिबैन फरमाते हैं नहीं, इस औरत पर इद्दत वाजिब होगी क्योंकि दारुल इस्लाम में आई है, यहां आकर जुदाई वाकई हुई है, तो अब इस पर इस्लामी अहकाम लाजिम है, तो अब इसको इद्दत गुजारना पड़ेगी। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि ये जो इद्दत होती है ये माकबल के निकाह का असर होता है, माकबल में जो निकाह था उसके एहतराम को जाहिर करने के लिए, उसकी इज्जत को जाहिर करने के लिए शरीयत ने औरत पर इद्दत वाजिब की है, लेकिन हरबी की मिल्कियत का तो कोई एहतराम नहीं है। यह औरत मुसलमान होकर यहां आई है या जिम्मिया यहां आई है तो किसके निकाह में थी? हरबी के निकाह में थी, और हरबी की मिलके निकाह का तो कोई एहतराम नहीं है, लिहाजा इन पर इद्दत वाजिब नहीं होगी, क्योंकि इद्दत वैसे नहीं वाजिब होती, माकबल के निकाह के एहतराम और इज्जत के तौर पर वाजिब होती है, और हरबी के मिलके निकाह की तो कोई इज्जत और एहतराम नहीं है भाई। और फिर यह मसला भी आपको बतलाया था कि अगर यह औरत हामिला हो तो फिर आगे निकाह नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि यह हमल साबितुन नसब है, ये उसी हरबी का बच्चा शुमार होगा, तो जब यह हमल साबितुन नसब है, जब सबूत नसब के एतबार से यह औरत फिराश है, तो मनए निकाह के एतबार से भी इसको फिराश शुमार किया जाएगा बतौर एहतियात के भाई, वरना तो इज्तिमा बैनल फिराशैन लाजिम आएगा कि एक औरत दो मर्दों की फिराश हो जाएगी, और एक औरत तो दो मर्दों का फिराश नहीं हो सकती। फिर उसके बाद मसला जिक्र फरमाया था कि अगर मियां बीवी में से कोई एक मुर्तद हो जाए तो इस सूरत के अंदर भी निकाह टूट जाएगा, उनमें जुदाई आ जाएगी, और यह फस्खे निकाह है शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक, जबकि इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं कि अगर मर्द मुर्तद हुआ है तो फिर यह तलाक के हुक्म में है, क्योंकि जुदाई खावंद की तरफ से आई है। तो इमाम मोहम्मद रहमल्ला इस इर्तेदाद खावंद को एतबार करते हैं इबाए खावंद पर, खावंद जैसे इस्लाम से इनकार करता है तो वो उसकी वजह से जो जुदाई आती है उसको तलाक शुमार किया जाता है, तो ये खावन के इत्तेदाद की वजह से जो जुदाई आई है उसको भी तलाक शुमार किया जाएगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह दोनों जगह फरमाते हैं कि चाहे जुदाई खावन के इनकार की वजह से आए या खावन के इर्तेदाद की वजह से आए, हर हाल में यह फस्खे निकाह है, इसलिए क्योंकि इसमें मियां बीवी दोनों का दखल है। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि इबा अनिल इस्लाम की सूरत में तो खावन की तरफ से जुदाई आए तो वह तलाक के हुक्म में है, क्योंकि इस्लाम से इनकार ये निकाह के मुनाफी नहीं है। बीवी मुसलमान हो गई है, खावन इस्लाम से इनकार कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जुदाई नहीं आई, यहां तक कि काजी इनमें जुदाई करवा दे। भाई मालूम हुआ इबा अनिल इनकार के बावजूद निकाह रह सकता है, वो निकाह के मुनाफी नहीं। जबकि मुर्तद होना ये तो निकाह के मुनाफी है भाई, मुर्तद जो है उसकी इस्मत खत्म हो जाती है, उस वो ना अपनी जान का मालिक रहा ना अपने माल का मालिक रहा, जब वो अपनी किसी चीज का मालिक ना रहा तो मिल्कियत निकाह का भी मालिक ना रहा, तो वो मिल्कियत भी खत्म हो गई। तो इर्तेदाद क्या है? निकाह के मुनाफी है, लिहाजा इसको यहां पर तलाक करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए क्योंकि इर्तेदाद के साथ सुबूत निकाह ही नहीं हो सकता। और तलाक वो तो रफाई निकाह का नाम है, पहले निकाह का सबूत तो हो फिर उसका रफा भी हो सकता है, जबकि इर्तेदाद के साथ तो निकाह का सबूत ही नहीं हो सकता, तो रफाई निकाह का क्या माना भाई? इर्तेदाद के साथ रफाई निकाह का क्या माना है? बात समझ में आ गई? तो लिहाजा इर्तेदाद को रफ़े निकाह यानी तलाक करार नहीं दिया जा सकता। तो तलाक जो है वह रफ़े निकाह का नाम है और इर्तेदाद जो है वह निकाह के मुनाफी है, इर्तेदाद के साथ निकाह का सबूत ही नहीं हो सकता। तो इस इर्तेदाद को हम तलाक करार नहीं दे सकते, क्योंकि तलाक किस चीज का नाम है? रफ़े निकाह। भाई आप इर्तेदाद को कैसे रफ़े निकाह करार दे सकते हैं, जबकि इर्तेदाद तो निकाह के मुनाफी है, इर्तेदाद के साथ तो निकाह का सबूत ही नहीं हो सकता। जब निकाह का सबूत नहीं हो सकता तो रफ़े निकाह यानी निकाह को उठाना वो कैसे होगा? रफ़े निकाह के लिए पहले निकाह का सबूत चाहिए। क्या चाहिए? एक चीज का सबूत हो फिर उसको उठाया जाए। और इर्तेदाद तो क्या है? निकाह के मुनाफी है, उसके साथ तो निकाह का सबूत ही नहीं हो सकता। जब निकाह का सबूत नहीं हो सकता तो रफ़े निकाह कहां से होगा भाई? तवज्जो है, पहले एक चीज का सबूत हो सके फिर उसका रफा भी हो सकता है, लेकिन इर्तेदाद के साथ तो सबूत निकाह नहीं। जब सबूत निकाह नहीं तो रफ़े निकाह भी इसको करार नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा इर्तेदाद को रफ़े निकाह यानी तलाक करार नहीं दिया जा सकता। और फिर साहिब हिदाया ने यह मसला बयान फरमाया था कि अगर मियां बीवी दोनों इकट्ठे मुर्तद हुए और फिर इकट्ठे मुसलमान हो गए तो ये अपने निकाह पर बरकरार रहेंगे, और यह हुक्म इस्तेहसानन है, वरना कयास तो यही तकाजा करता है कि दोनों जैसे ही मुर्तद हुए निकाह टूट जाना चाहिए, क्योंकि जब एक के मुर्तद होने से निकाह फसख होता था तो दो के मुर्तद होने से बतरीके औला निकाह को फसख होना चाहिए। लेकिन इस्तेहसानन यह हुक्म लगाया गया कि ये अपने निकाह पर बाकी रहेंगे। कब? जब ये दोनों इकट्ठे मुर्तद हुए और फिर इकट्ठे मुसलमान हो गए तो अब ये अपने निकाह पर बाकी हैं। और दलील जो है वो बनू हनीफा का वाकया है भाई। बनू हनीफा अरब का एक कबीला था, हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये मुर्तद हो गए थे, इन्होंने जकात की अदायगी का इनकार कर दिया था, तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी तरफ लश्कर भेजे और ये फिर दोबारा मुसलमान हो गए भाई, और सहाबा ने इनको तजदीद निकाह का हुक्म नहीं दिया। तो ये वाकया सब सहाबा के सामने हुआ लेकिन सहाबा ने उनको तजदीद निकाह का हुक्म नहीं दिया, तो मालूम हुआ इस पर सहाबा का इजमा हो गया कि अगर मियां बीवी इकट्ठे मुर्तद हों और फिर इकट्ठे मुसलमान हों तो उनको तजदीद निकाह का हुक्म नहीं दिया जाएगा, वो अपने निकाह पर बरकरार हैं। तो मालूम हुआ कि मियां बीवी इकट्ठे मुर्तद हुए और फिर इकट्ठे मुसलमान हुए, इसकी दलील इजमाए सहाबा है। क्या है? इजमाए सहाबा। और इजमाए सहाबा को यहां वो इस्तेहसान करार दे रहे हैं। मैंने आपको बतलाया था भाई इस्तेहसान किसे कहते हैं? इस्तेहसान वो मुत्तफकुन अले दलील है कि जिसके मुकाबले में कियास आ रहा हो, जैसे कुरान है उसके मुकाबले में अगर कयास आ रहा है तो तरजीह कुरान को है, अलबत्ता इसको फिर इस्तेहसान कहेंगे। हदीस के मुकाबले में कयास आ जाए तो तरजीह हदीस को है, हदीस पर अमल किया जाएगा, लेकिन इस दलील को अब क्या कहेंगे, इस हदीस को इस्तेहसान कहेंगे क्योंकि इसके मुकाबले में कयास मौजूद है। इसी तरह यहां पर देखो इजमा है एक तरफ सहाबा का और एक तरफ कियास है। कियास तकाजा करता है कि एक के मुर्तद होने से निकाह फासिद होता है तो दोनों के मुर्तद होने से बतरीके औला निकाह फासिद होना चाहिए। तो एक तरफ कियास है और एक तरफ इजमाए सहाबा है, और इजमाए सहाबा को ये क्या करार दे रहे हैं, इस्तेहसान। मालूम हुआ इस्तेहसान वो मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील, चाहे कुरान हो चाहे हदीस हो चाहे इजमा हो, उसको कहते हैं जब उसके मुकाबले में कियास आ रहा हो। और मैंने बताया ज्यादातर इस्तेहसान का इतलाक कियास खफी पर होता है, एक कियास जली होता है जिसमें बात गहरी नहीं होती, जाहिर होती है, अकल फौरन उस तक पहुंच जाती है, और एक कियास खफी होता है जिसमें गौर और फिक्र करना पड़ता है फिर अकल वहां तक पहुंचती है। तो याद रखो कियास खफी को भी इस्तेहसान तब कहेंगे जब इसके मुकाबले में कियास जली आ रहा हो। अगर कियास जली मुकाबले में नहीं तो फिर कियास खफी जितना भी गहरा हो उसको कियास ही कहते हैं, इस्तेहसान नहीं कहते। तो बहरहाल जिक्र यहां यह करना था कि देखो यहां इजमाए सहाबा को इस्तेहसान करार दिया जा रहा है, यानी एक मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील को। बात समझ में आ गई। फिर यहां साहिब हिदाया पर इश्काल हुआ कि इर्तेदाद तो उनकी तरफ से एक ही वक्त में नहीं हुआ होगा, कोई पहले मुर्तद हुआ है कोई बाद में, तो हो सकता है खावन पहले मुर्तद हुआ हो बीवी बाद में मुर्तद हुई हो, लेकिन आप क्या जिक्र कर रहे हैं कि इनका इर्तेदाद भी इकट्ठा था और इनका मुसलमान होना भी इकट्ठा था। तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि जब तारीख मजहूल हो, तकदीम और ताखीर का पता ना चल सके, तो फिर उसको इकट्ठा ही शुमार किया जाता है। और फिर यह भी मसला जिक्र किया अगर दोनों मुर्तद हुए और फिर दोनों में से एक मुसलमान होता है तो इस सूरत में भी फौरन निकाह टूट जाएगा, निकाह फसख हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि जैसे इर्तेदाद मुनाफी निकाह है इसी तरह इसरार अलल इर्तेदाद ये भी क्या है, मुनाफी निकाह। तो जब दोनों मुर्तद हुए हैं और एक मुसलमान हो गया तो मालूम है दूसरा इर्तेदाद पर इसरार कर रहा है, और जैसे इर्तेदाद मुनाफी निकाह है इसी तरह इसरार अलल इर्तेदाद जो है ये भी मुनाफी निकाह है, यानी इर्तेदाद पर जमे रहना, इससे भी निकाह फौरन फासिद हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। बाबुल कस्म, कसम ये मस्तर है बमाने तकसीम के, किसी चीज को तकसीम करना, और यहां इससे मुराद यह है कि बीवियों के दरमियान जो रातों की तकसीम है उसमें बराबरी होनी चाहिए, उसको बयान किया जाएगा। तो यहां कसम से क्या मुराद है, बीवियों के दरमियान रातों की तकसीम जो है। याद रखो अगर किसी शख्स की एक से ज्यादा बीवियां हैं तो उनके दरमियान बराबरी करना उस शख्स पर लाजिम है भाई, यानी अगर एक रात एक बीवी के पास गुजारता है तो इसी तरह एक रात दूसरी बीवी के पास गुजारे, और अगर दो रातें एक बीवी के पास गुजारता है तो दूसरी के पास भी दो रातें गुजारे, अगर एक बीवी के पास तीन रातें गुजारता है तो दूसरी के पास भी तीन गुजारना पड़ेंगी। ये अदल और ये बराबरी उस पर लाजिम है भाई। और यह मसला भी याद रखना कि रात के अंदर बराबरी जरूरी है, दिन में बराबरी जरूरी नहीं। दिन में अगर एक बीवी के पास ज्यादा वक्त गुजारता है और दूसरी के पास कम वक्त गुजारता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रात में बराबरी जरूरी है। चुनांचे अगर एक बीवी के पास मगरिब के बाद आया है तो दूसरी के पास भी मगरिब के बाद ही आना चाहिए, अगर ईशा के बाद आया है दूसरी बीवी के पास तो ये इसने बराबरी नहीं की भाई। और फिर यह भी याद रखना कि रातें गुजारने में बराबरी जरूरी है, जितनी रातें एक औरत के पास उतनी ही दूसरी के पास, तो इस तरह बारी बारी दोनों के पास रातें गुजारेगा और यह सिलसिला इसी तरह चलेगा भाई। लेकिन यह रातें गुजारने में बराबरी जरूरी है, सोहबत के अंदर बराबरी जरूरी नहीं। सोहबत में बराबरी जरूरी नहीं कि एक बीवी से जितनी सोहबत की है उतनी ही सोहबत दूसरी से करे, यह बराबरी जरूरी नहीं। लेकिन हां, ऐसा भी ना करे कि एक बीवी से तो सोहबत करता है और दूसरी को बिल्कुल ही वैसे छोड़ दिया, यह भी सही नहीं है। तो कहते हैं बाब उल कस्मी, ये बाब है तकसीम के बयान में, यानी बीवियों के दरमियान रातों की तकसीम के बारे में। वह इदाकान अली रजुलिमरातानी हुर्रतानी, और जब किसी शख्स की दो आजाद बीवियां हों, आजाद की कैद लगाई इसलिए क्योंकि आगे ये आपको बतलाएंगे अगर एक बीवी आजाद है और एक बांदी है तो फिर बांदी का हक निसफ है, यानी बांदी के पास अगर एक रात गुजारता है तो आजाद बीवी के पास दो रातें गुजारना पड़ेंगी, क्योंकि बांदी के लिए अहकाम में तंसीफ है। जैसे आजाद औरत की तीन तलाकें हैं तो बांदी की दो तलाकें हैं, आजाद औरत की इद्दत तीन हैज हैं तो बांदी की इद्दत दो हैज हैं, तो बांदी के लिए तंसीफ होती है, उसके हक में कमी होगी। तो अगर बांदी के पास एक रात गुजारी है तो आजाद औरत के पास दो रातें गुजारेगा। तो इसीलिए कहा यहां पर कि वो दोनों आजाद हों तो फिर बराबरी होगी, एक रात एक के पास तो दूसरी रात दूसरी के पास। तो कहते हैं वह इदा कान अली रजुल इमरातानी हुर्रतानी, जब किसी शख्स की दो आजाद बीवियां हों, फाले ही अय्यादिल बैनहुमा फिल कस्म, तो उस शख्स पर लाजिम है कि वो अदल करे, इंसाफ करे उन दोनों के दरमियान, फिल कस्म तकसीम के अंदर, यानी रातों की तकसीम में उनमें बराबरी करे। बिकरैनी कानता और सय्यिबैनी, वो दोनों चाहे बाकेरा हों या दोनों सय्यिबा हों, और इहदा हुमा बिकरं वल उखरा सय्यिबा, या दोनों में से एक बाकेरा हो और एक सय्यिबा हो, यानी जिस वक्त निकाह किया था तो उस वक्त चाहे दोनों बाकेरा थी या चाहे दोनों सय्यिबा थी, या एक से जब निकाह किया था तो वो बाकेरा थी और एक से जब निकाह किया था तो वो सय्यिबा थी, जो भी सूरत हो बहरहाल इनमें तकसीम के अंदर बराबरी करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बाकिरा का हक ज्यादा होगा और सय्यिबा का हक कम होगा, नहीं, सब में बराबरी करना पड़ेगी। तो यह माना है कि इनमें बराबरी करना पड़ेगी, लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलामु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की वजह से कि आपने फरमाया, मन कानत लहुमरातानी, कि जिस शख्स की दो बीवियां हों, व माल इला इहदा हुमा फिल कस्मी, और वो शख्स माइल हो गया इन दोनों में से किसी एक की तरफ तकसीम में, किसी एक की तरफ माइल हो गया, यानी उसकी ज्यादा रातें उसके पास गुजारता है और दूसरी के पास कम रातें गुजारता है, तो ऐसा शख्स जा अयामल कियामती, कियामत के दिन आएगा, वह शिक्कुहू माइलुन, और इसका निस्व बदन जो है माइलुन टेढ़ा होगा, यानी मफलूज होगा, इसका आधा बदन क्या होगा, मफलूज होगा। जो शख्स, जिस शख्स की दो बीवियां हों और उनके दरमियान वो अदल और इंसाफ के साथ रातें तकसीम नहीं करता। आगे देखिए, वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अन्न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान यअदिलु फिल क़स्म बैन निसाईही, कि हुजूर अलैहिस्सलाम अदल फरमाते थे अपनी बीवियों के दरमियान तकसीम के अंदर। व कान यकूल, और वो फरमाते थे, अल्लाहुम्मा हादा क़स्मी फी मा अमलिकु, कि ए अल्लाह ये मेरी तकसीम है, मा अमलिकु, उस चीज में जिसका मैं मालिक हूं, एला ये मेरी तकसीम है उस चीज में जिसका मैं मालिक हूं, यानी जो मेरे इख्तियार में है, फला तो आखिजनी फी माला अमलिकु, बस एला आप मेरा मुआखजा न फरमाइए उस चीज में जिसका मैं मालिक नहीं हूं, यानी जो मेरे इख्तियार में नहीं है, यानी ज्यादतल महब्बती, यानी महब्बत की ज्यादती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अजवाज में सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से थी, तो हुजूर अलैहि सलाम अपनी तमाम अजवाज के अंदर रातों की तकसीम में अदल फरमाते, बराबरी फरमाते थे, लेकिन मोहब्बत तो हजरत आयशा सिद्दीका से ज्यादा थी, तो अल्लाह से फरमाते कि या अल्लाह जो मेरे इख्तियार में था रातों की तकसीम में मैंने अदल से काम लिया है, लेकिन एक चीज जो गैर इख्तियारी है कि आयशा से मुझे ज्यादा मोहब्बत है, तो जिस चीज में मेरा इख्तियार नहीं उस पर मेरा मुआखजा न फरमाइए। तो देखो हदीस यहां तक है, फला तो आखिरनी फीमा ला अमलिको, आगे जो आया यानी ज्यादा तल महब्बती, यानी महब्बत की ज्यादती। ये रावी तफसीर कर रहे हैं कि हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह उस चीज पर जो मेरे इख्तियार में नहीं उस पर मेरा मुआखजा ना फरमाए, यानी ये जो मुझे ज्यादा मोहब्बत है आयशा सिद्दीका से उस पर मेरा मुआखजा ना फरमाए क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। वला फसल फीमा रवैना, और कोई फर्क नहीं है उस हदीस के अंदर जिसको हमने रिवायत किया। भाई पहली हदीस क्या आई थी, मन कानत लहुम्रअतानि वमाल इला इहदाहुमा फिल कस्मि जाअ यौमल क़ियामति वशिक्कुहु माइलुन, जिसकी दो बीवियां हैं और वो इनमें से किसी एक की तरफ माइल हो गया, यानी इंसाफ नहीं किया उसने, तो क्यामत के दिन अब वो आएगा और उसका निस्फे बदन टेढ़ा होगा यानी मफलूज होगा। तो देखो इस हदीस के अंदर कोई फर्क नहीं किया गया बाकिरा और सैयबा का, जिसकी भी दो बीवियां हैं उनमें अदल जरूरी है, यहां कोई फर्क नहीं है बाकिरा और सैयबा का। भाई बात समझ में आ गई, तो चाहे दोनों बाकिरा हो चाहे दोनों सैयबा हो या एक बाकिरा एक सैयबा हो, हर सूरत को यह हदीस शामिल है, सब में अदल करना पड़ेगा। तो कहते हैं वला फसल फीमा रवैना, और कोई फर्क नहीं है उस हदीस के अंदर जो हमने रिवायत कर दी। वल कदीमतु वल जदीदतु सबाउन, और पुरानी और नई बराबर हैं। एक औरत है उसे पहले से निकाह किया हुआ था और दूसरी के साथ अब निकाह किया है तो भी बराबरी जरूरी है। ये नहीं कि इसे तो मैंने अभी नया नया निकाह किया है लिहाजा ज्यादा रातें इसके पास गुजारे, नहीं नहीं, बराबरी जरूरी है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल कदीमतु वल जदीदतु सवा उन, और पुरानी और नई बीवी जो है सवा उन बराबर हैं। लि इतलाकी मा रवैना, बवजह उस हदीस के मुतलक होने की जिसको हमने रिवायत कर दिया, वही जो पहली हदीस उसके अंदर नई या पुरानी का कोई फर्क नहीं है, दो औरतों में बराबरी जरूरी है। वली अन्नल कस्म मिन हुकूक निकाह वला तफावुत बैनहुन्न फी दालिका, नकली दलील के बाद अब अकली दलील साहिब हिदायत जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं इसलिए क्योंकि जो रातों की तकसीम है ये निकाह के हुकूक में से है, जैसे नफका निकाह के हुकूक में से है, तो नफका सब औरतों को बराबरी के साथ दिया जाता है, इसी तरह ये रातें भी निकाह के हुकूक में से हैं, लिहाजा सब औरतों में इसको बराबरी के साथ तकसीम करना पड़ेगा। तो कहते हैं वली अन अल-क़स्म मिन हुकूक निकाह, और इसलिए क्योंकि ये जो रातों की तकसीम है ये निकाह के हुकूक में से है। वला तफावुत बैनहुन्न फी ज़ालिका, और इसमें कोई फर्क नहीं है उन बीवियों के बीच में, सबको बराबरी के साथ हक मिलेगा। वल इख्तियार फी मिक़दारी दौरी इला ज़ौजी, वल इख्तियार फी मिक़दारी दौरी, दौर कहते हैं चक्कर लगाना, दारा या दूरु दौरानन का क्या माना है, चक्कर लगाना, तो चक्कर लगाने में खावंद का इख्तियार है, यानी चाहे तो वह हर औरत के पास एक एक रात गुजारे, चाहे तो हर औरत के पास दो दो रातें गुजारे, चाहे हर औरत के पास तीन तीन रातें गुजारे। तो ये जो देखो चक्कर चलेगा, तीन रातें एक बीवी के पास, तीन दूसरी के पास, फिर तीन रातें पहली के पास, फिर तीन रातें दूसरी के पास, तो ये जो रातों की तकसीम का चक्कर चल रहा है ये खावंद का इख्तियार है, वो तकसीम जैसे मर्जी करे लेकिन बराबरी होनी चाहिए। अगर वो एक एक रात गुजारता है तो भी बराबरी, एक रात एक के पास है तो दूसरी दूसरी के पास, अगर वो दो या तीन रातें एक के पास गुजारना चाहता है तो दूसरी के पास भी दो या तीन रातें उसी के बराबर गुजारना पड़ेंगी। तो रातों की वो तकसीम कैसे करता है ये उसकी मर्जी है लेकिन बराबरी होनी चाहिए। भाई बात समझ में आ गई। तो ये माना है वल इख्तियार फी मिकदारी दौरी इला ज़ौजी, और चक्कर लगाने की मिकदार का जो इख्तियार है वो खावंद के सुपुर्द है। लिअन्नल मुस्तहक हुआ तस्वियतु दूना तरीकिहा, इसको मुस्तहक पढ़ें भाई हा के फतहा के साथ, और मुस्तहक का यहां तर्जमा करें वाजिब के, क्या तर्जमा वाजिब, तो मुस्तहक का तर्जमा वाजिब के। भाई कहते हैं लिअन्नल मुस्तहक हुआ तस्वियतु दूना तरीकिहा, इसलिए क्योंकि वाजिब जो है हुआ तस्वियतु वो बराबरी करना है, दूना तरीकिहा न के बराबरी के तरीका, बराबरी वाजिब है, बराबरी का तरीका वो वाजिब खावंद पर नहीं, वो अपनी मर्जी से जैसे भी रखे, चाहे एक एक रात रखे, चाहे दो दो रातें, चाहे तीन तीन रातें रखे, चाहे एक के बाद दस रातें गुजारता है दूसरी के बाद दस रातें गुजारे, वो जिस तरह भी इसकी तकसीम करना चाहे वो कर सकता है। तो बराबरी वाजिब है, बराबरी का तरीका उस पर वाजिब नहीं, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो ये माना है लिअन्न अल मुस्तहक का हुआ तस्वियत, इसलिए क्योंकि वाजिब जो है वो बराबरी है, दूना तरीकिहा, ना कि उस बराबरी का तरीका, व तस्वियत फिल बैतूता तिला फिल मुजामाती, और नीस बराबरी जो है रात गुजारने में होगी, ला फिल मुजामाती सोहबत करने में नहीं, सोहबत करने में बराबरी जरूरी नहीं है। तो कहते हैं वह तस्वीयत फिल बैतू ततिला फिल मुजामाती, और बराबरी जो है रात गुजारने में होगी ना कि सोहबत में, लिअन्नहा तबतनी अलन नशाती, इसलिए क्योंकि सोहबत की बुनियाद जो है वो नशात पर होती है। नशात कहते हैं कि इंसान की तबीयत खुशगवार हो और वो हशाश और बशाश और मुस्तईद हो। नशात किसे कहते हैं कि इंसान की तबीयत खुशगवार हो और वो हशाश और बशाश हो, मुस्तईद हो, तो इसको नशात कहते हैं। और ये तो इंसान के इख्तियार में नहीं है, तबीयत का खुशगवार होना और इंसान का हशाश बशाश और मुस्तईद होना, ये तो इख्तियारी चीज नहीं है, लिहाजा इस पर खावंद को मजबूर नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? तो ये माना है लिअन्नहा तबतनी अलन नशाती, इसलिए क्योंकि सोहबत की बुनियाद जो है नशात पर है। व इन कानत इहदाहुमा हुर्रतन वल उखरा अमतन, अब बांदी का हुक्म आ गया, अगर एक औरत आजाद है और एक बांदी है फिर कैसे तकसीम करेंगे, तो मैंने बतला दिया कि आजाद औरत को बांदी के मुकाबले में दुगना हक दिया जाएगा। बांदी के पास एक रात है तो आजाद औरत के पास दो रातें, अगर बांदी के पास दो रातें हैं तो आजाद औरत के पास उससे दुगनी यानी चार रातें, बांदी के पास अगर तीन रातें गुजारी हैं तो आजाद औरत के पास दुगनी यानी छह रातें। तो कहते हैं वह इन कानत इहदाहुमा हुर्रतन वल उखरा अमतन, और अगर इन दोनों बीवियों में से एक आजाद है और दूसरी बांदी है, फलिल हुर्रति सुलुसानी मिनल कस्मी वलिल अमति सुलुस, तो आजाद औरत के लिए दो तिहाई है तकसीम में से, वलिल अमति सुलुस, और बांदी के लिए एक तिहाई। एक रात बांदी के पास तो आजाद के पास कितनी रातें, दो, तो गोया हर तीन रातों में से एक रात बांदी के पास और दो रातें आजाद औरत के पास, तो गोया कुल कितनी रातें हैं, तीन, तीन में से एक सुलुस एक तिहाई, एक रात किसका हक, बांदी का, और दो सुलुस वो किसका हक, आजाद औरत का। तवज्जो है? तो यही बयान कर रहे हैं, फलिल हुर्रति सुलुसानी मिनल कस्मी, आजाद औरत के लिए दो तिहाई है यानी सुलुस में से दो हिस्से हैं, मिनल कस्मी तकसीम में से, वलिल अमति सुलुसु, और बांदी के लिए एक तिहाई है यानी एक सुलुस है, बिदालिका वरदल असरु, इसी के साथ असर वारिद हुआ है, इसी के साथ असर वारिद हुआ है। याद रखो, याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल व अफ़ाल के चार नाम हैं, हदीस, असर, खबर और सुन्नत। हुजूर अलैहि सलाम के अकवाल व अफ़ाल के लिए कितने नाम इस्तेमाल करते हैं उलमा, चार नाम, कभी हदीस का लफ्ज बोलते हैं, कभी खबर, कभी खबर, कभी असर और कभी सुन्नत। तो ये चारों नाम हैं हदीस के, लेकिन बाज उलमा इनमें फर्क करते हैं, जैसे साहिबे हिदाया, साहिबे हिदाया असर का नाम कौल सहाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं, साहिबे हिदाया असर का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कौल सहाबी के लिए। तो यहां पर भी आ रहा है बिजालिका वरदल असरु, इसी के साथ असर वारिद हुआ है यानी कौल सहाबी आया है। और यह हदीस मेरे हाशिए में दी हुई है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लिल हुर्रति सुलुसान मिनल कस्मी वलिल अमति सुलुसु, कि आजाद औरत के लिए तकसीम के अंदर दो सुलुस हैं और बांदी के लिए एक सुलुस है। भाई तो यह किसका कौल है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का। तो कहते हैं बिज़ालिका वरदल असर, इसी के साथ असर यानी कौले सहाबी वारिद हुआ है, वली अन्न हिल्लल अमति अनकसु मिन हिल्लिल हुर्रति, और नीज इसलिए क्योंकि बांदी का हलाल होना यह कम है आजाद औरत के हलाल होने के मुकाबले में। याद रखो, बांदी की हिल्लत आजाद औरत के मुकाबले में आधी है, भाई कम है। आप यह मसला पहले भी पढ़ चुके हैं, एक शख्स वो निकाह करना चाहता है, उसके आकद में कोई औरत नहीं है, तो वो आजाद औरत से भी निकाह कर सकता है और बांदी से भी निकाह कर सकता है। तो आजाद औरत का महर ज्यादा होगा और बांदी का महर कम होगा। अलबत्ता बांदी से जो औलाद पैदा होगी वो उसी बांदी के आका के गुलाम और बांदियां शुमार होंगे। तो आजाद आदमी को इख्तियार है, जब उसके अकद में कोई बीवी ना हो वो आजाद औरत से भी निकाह कर सकता है और बांदी से भी। लेकिन अगर एक शख्स के अकद में पहले से एक आजाद बीवी मौजूद है, एक आजाद औरत उसके अकद में है, तो फिर अब उसको बांदी से निकाह की इजाजत नहीं, यानी आजाद औरत के होते हुए बांदी से निकाह वो नहीं कर सकता। हां इसका बरअक्स कर सकता है, अगर एक शख्स के अकद में पहले से एक बांदी मौजूद है अब वो आजाद औरत से निकाह करना चाहता है वो कर सकता है। तवज्जो है, तो देखा बाज सूरतों के अंदर बांदी महल्ले निकाह ही नहीं रहती, उसे निकाह जायज ही नहीं रहता, और वो कौन सी सूरत है? जब अकद में पहले से आजाद औरत मौजूद हो। तो देखा मालूम हुआ बांदी तमाम सूरतों में हलाल नहीं बल्कि बाज सूरतों में हलाल है, बाज सूरतों में हलाल नहीं है। तो देखा बांदी की हिल्लत आजाद औरत की हिल्लत से कम दर्जे की है, लिहाजा हुकूक के अंदर भी बांदी का हिस्सा कम होगा आजाद औरत के मुकाबले में। बांदी का एक तिहाई हिस्सा है तो आजाद औरत के दो तिहाई हिस्से होंगे। तो यह माना है वली अन्न हिल्लल अमति अनकसु मिन हिल्लिल हुर्रति, इसलिए क्योंकि बांदी का हलाल होना यह कम है आजाद औरत के हलाल होने के मुकाबले में, यानी बाज सूरतों में बांदी हलाल ही नहीं रहती जब पहले से एक आजाद औरत किसी शख्स के निकाह में हो। फला बुद्ध मिन इजहार इन नुकसान फिल हुकूकी, तो जरूरी है कि इस कमी का इजहार किया जाए हुकूक में भी। जब बांदी की हिल्लत कम दर्जे की है तो उसके हुकूक में भी कमी होनी चाहिए, उसका इजहार होना चाहिए। वल मुकातबत वल मुदब्बरत व उम्मुल वलद बिमंजिलतिल अमति, और मुकातबा मुदब्बरा और उम्मे वलद ये भी बांदी के दर्जे में ही हैं। मुकातबा वो औरत जिसे अक्का ने कह दिया कि इतना माल ले आओ दो साल के अंदर या तीन साल के अंदर तो तुम आजाद हो, तो ये मुकातबा है। और उम्मुदब्बरा वो बांदी जिसे आका ने कह दिया मेरे मरने के बाद तू आजाद है, और उम्मे वलद वो बांदी जिससे औलाद पैदा हुई और फिर आका ने इकरार कर लिया कि ये मेरी औलाद है तो ये उसकी उम्मे वलद बन गई। तो इनका क्या हुक्म है? साहिबे हिदाया बतला रहे हैं कि ये सब भी बांदियां ही हैं, लिहाजा इनके लिए भी बांदी वाला ही हुक्म होगा, यानी आजाद औरत को दो सुलुस मिलेंगे तो इनको एक सुलुस हिस्सा मिलेगा तकसीम के अंदर। तो कहते हैं वल मुकातबतु वल मुदब्बरतु व उम्मुल वलद बिमंजिलतिल अमति, और मुकातबा मुदब्बरा और उम्मे वलद ये भी आम बांदी के दर्जे में हैं। लिअन्न रिक्क फीहिन्न काइमुन, इसलिए क्योंकि इनके अंदर भी गुलामी मौजूद है, ये सब भी क्या हैं? बांदियां ही हैं भाई। आगे देखिए काल वला हक लहुन नफिल कस्म हालत सफर, अब सफर का मसला जिक्र कर रहे हैं। याद रखो सफर के अंदर खावन जिस बीवी को भी ले जाना चाहे ले जा सकता है, सफर के अंदर तकसीम जारी नहीं होगी भाई। तो सफर के अंदर इन बीवियों का कोई हक नहीं है, खावन जिसको भी ले जाना चाहे ले जा सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि बीवियों में कुरआ अंदाजी करवा ले, जिसका नाम निकले उसको सफर पर ले जाए। तवज्जो है, देखिए भाई कहते हैं काल वला हक लहुन नफिल कस्मी हालत सफरी, और इन औरतों का कोई हक नहीं है तकसीम में हालत सफरी, सफर की हालत में, सफर की हालत में तकसीम के अंदर इन औरतों का कोई हक नहीं है। फयुसाफिरु ज़ौज बि मनशा अमीन हुन्ना, तो खावन सफर कर सकता है जिसके साथ चाहे इनमें से। वल औला अन युक़्रअ बैनहुन्ना, लेकिन बेहतर यह है कि खावन इनके दरमियान कुरआ अंदाजी कर ले। फयुसाफिरु बि मन खरजत कुरअतुहा, तो जिसके नाम कुरआ निकले उसके साथ सफर कर ले। फयुसाफिरु, पस वो सफर करे भी मन खरजत कुरअतुहा, उसके साथ जिसका कुरआन निकले। वकाल शाफिय्यु रहमहुल्लाह, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अलकुरअतु मुस्तहक्कतुन, अलकुरअतु मुस्तहक्का, यहां भी इसको इसमें मफूल पढ़ना भाई, हा पर सबर पढ़ें, और माना वही कि कुरआ वाजिब है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कुरआ मुस्तहब नहीं है बल्कि कुरआन दाजी वाजिब है। तो वो फरमाते हैं अलकुरअतु मुस्तहक्कतुन, के कुरान दाजी जो है वो वाजिब है। लिमा रुविया अन्न नबी अलैहि सलामु काना इदा अरादा सफरन अकरअ बैन निसाईही, बवजह उस हदीस को जिसको रिवायत किया गया है कि अन्न नबी अलैहि सलाम काना इदा अरादा सफरन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर का इरादा फरमाते थे अकरअ बैन निसाईही तो कुरान दाजी फरमाते थे अपनी बीवियों के दरमियान। तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलाम कुरानदाजी करते थे, मालूम हुआ कुरानदाजी वाजिब है। इल्ला अन्ना नकूलु, मगर ये कि हम कहते हैं इन्नल कुरअत लितत्यीब कुलूबिहिन्न, तत्यीब तय्यब युतय्यिब तत्यीबन का माना है खुश करना। तो हम कहते हैं कि कुरानदाजी जो है ये औरतों के दिल को खुश करने के लिए है कि वो खुश रहेंगी, इत्मीनान रहेगा, तो इसलिए कुरानदाजी की जाएगी। तो लिहाजा ये कुरानदाजी मुस्तहब होगी, वाजिब नहीं, क्योंकि ये उन बीवियों के दिल को खुश करने के लिए है सिर्फ, ये खावन पर कोई वाजिब नहीं है। इल्ला अन्ना नकूलु, मगर ये कि हम कहते हैं इन्नल कुरअत लितत्यीब कुलूबिहिन्न, के कुरानदाजी करना ये इन बीवियों के दिलों को खुश करने के लिए है। फयकून मिन बाबिल इस्तेहबाबी, तो ये बाब इस्तेहबाब से होगा, ये कुरानदाजी क्या होगी मुस्तहब होगी। वहादा लिअन्नहु ला हक्का लिल मरअति इंदा मुसाफरति ज़ौजी, और ये इसलिए क्योंकि लिअन्नहु ला हक्का लिल मरअति, औरत का कोई हक नहीं है इंदा मुसाफरति ज़ौजी, खावंद के सफर करते वक्त, खावंद जब सफर पर जा रहा है तो औरत का उस पर कोई हक नहीं। चुनांचे इसीलिए कहते हैं कि खावंद अगर किसी एक बीवी को भी साथ नहीं लेकर जाना चाहता तो वो जा सकता है, शरअन बिल्कुल उसके लिए जायज है, हमारे नजदीक भी जायज और उनके नजदीक भी जायज है। ये तो जरूरी नहीं कि जिस सफर में भी जाना है बीवी को जरूर लेकर जाना है, नहीं, खावंद को इजाजत है, वो किसी बीवी के बगैर भी सफर कर सकता है। जब खावंद को बीवी के बगैर सफर जायज है, मालूम हुआ किसी औरत का इस सफर में हक नहीं है भाई। तो कहते हैं वहादा लिअन्नहु ला हक्का लिल मरअति इंदा मुसाफरति ज़ौजी, और ये इसलिए क्योंकि औरत का कोई हक नहीं है खावंद के सफर करते वक्त। अला यरा अन्न लहू अल्ला यस्तसहिब वाहिदतम मिनहुन्ना, अला यरा, आपकी किताबों में भी यरा है भाई, ये उमूमन अरबी में अला तरा इस्तेमाल होता है, अला तरा, क्या आप देखते नहीं, क्या आपको इलम नहीं, तवज्जो है, तो अला तारा का क्या माना होता है, क्या आप देखते नहीं, यानी क्या आपको इलम नहीं। तो यहां पर साहिब हिदाया ने यारा जिक्र फरमाया है, तो आप चाहें तो इसको मारूफ पढ़ें अला यारा, और जमीर लौटा दें इमाम शाफी रहमतुल्लाह की तरफ, क्योंकि उनसे इख्तिलाफ चल रहा है। अला यारा, क्या इमाम शाफी रहमतुल्लाह ये देखते नहीं हैं, क्या उनको यह मालूम नहीं है अन्न लहू अल्लाह यस्तसहिबा वाहिदतम मिनहुन्ना, कि खावंद के लिए जायज है। इस्तसहबा का माना साथ रखना, इस्तसहबा यस्तसहिबू का क्या माना, साथ रखना। अल्लाह यारा, क्या वो देखते नहीं हैं अन्न लहू अल्लाह यस्तसहिबा वाहिदतम मिनहुन्ना, कि खावंद उनमें से किसी एक को भी साथ ना रखे, यह खावंद के लिए जायज है। तवज्जो है, तो अल्लाह यारा का क्या तर्जमा कर लें, क्या वो देखते नहीं, यानी क्या उनको ये मालूम नहीं। ये दलील देने का एक अंदाज है, बात समझ में आ रही है। और नीज अगर चाहें तो आप इसको योरा भी पढ़ सकते हैं, अला योरा, अला तारा का क्या माना था, क्या आप देखते नहीं, यानी क्या आपको मालूम नहीं, तो अला योरा का भी इसी तरह तर्जमा कर लें, अला योरा, क्या ये बात मालूम नहीं है अन्न लहू अल्ला यस्तसहिब वाहिदतम मिनहुन्ना, के खावंद के लिए जायज है कि उनमें से किसी एक को भी साथ न रखे, अकेला ही सफर पर चला जाए, ये खावंद के लिए जायज है। मालूम हुआ खावंद के सफर में बीवियों का कोई हक नहीं, वरना खावंद के लिए जायज ही ना होता बगैर बीवियों के सफर भाई। तो इसको फिर आप अला यारा पढ़ें तो फिर जमीर इमाम शाफी रहमतुल्लाह की तरफ लौटाएं, क्या वो देखते नहीं, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है अला योरा पढ़ें, फिल मजहूल पढ़ें अला योरा, क्या ये बात मालूम नहीं। और आगे अन्न लहू अल्ला यस्तसहिब वाहिदतम मिनहुन्ना, ये पूरा जुमला इसके लिए नाइब फाइल बन जाएगा। ये अन्ना क्या करता है, जुमले को मुफरद के हुक्म में कर देता है, तो पूरा जुमला बतावीले मुफरद ये जो है ये नाइब फाइल बन जाएगा योरा के लिए। बात समझ में आ गई। अल्लाह योरा, क्या वो देखते नहीं, अन्न लहू अल्लाह यस्तसहिबा वाहिदत मिन हुन्ना, कि खावन का यह हक है कि इन बीवियों में से किसी एक को भी साथ न ले जाए। फकदा लहू अयुसाफिर अभी वाहिदत मिन हुन्ना, तो इसी तरह खावन के लिए जायज होगा कि वो इनमें से किसी एक के साथ सफर करे जिसके साथ वो चाहे। वला युहतसब अलैहि बितिल्कल मुद्दति, और खावन पर शुमार नहीं किया जाएगा उस मुद्दत को, यानी खावन जिस बीवी को ले जाना चाहे ले जा सकता है, अगर कुरानदाजी कर ले तो बेहतर है, अगर कुरानदाजी भी नहीं करता लेकिन किसी एक को साथ ले जाता है तो खावन की मर्जी है। और मसलन सफर पर बीवी को ले गया था और 15 दिन सफर में गुजार कर खावन वापस आया, तो ये जो 15 दिन है ये बारी में शुमार नहीं होंगे, ये वो रातों की तकसीम में शुमार नहीं होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसको 15 दिन अपने साथ रखा था लिहाजा आप दूसरी बीवी के पास भी 15 दिन गुजारने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस सफर को तकसीम के अंदर शुमार नहीं किया जाएगा, यह माना है। वला युहतसबु अलैहि बितिल्कल मुद्दति, और खावन पर उस मुद्दत को शुमार नहीं किया जाएगा, यानी तकसीम में से इसको शुमार नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, व इन रजियत इहदा ज़ौजाती बितर की कस्मी हाली साहिबती हा जाजा। भाई याद रखो, अगर बीवियों में से कोई एक बीवी अपनी बारी दूसरी बीवी को देना चाहती है तो कहते हैं यह भी जायज है, क्योंकि यह बारी उसका हक था तो यह अपना हक दूसरे को दे सकती है। और बाद में क्या फिर यह अपने हक में रुजू कर सकती है, कहते हैं हां बाद में यह अपने हक में रुजू कर सकती है। मसलन पहले उसने अपनी बारी दूसरी बीवी को दे दी कि मेरे पास रात गुजारने की हाजत नहीं, इसी के पास रात गुजारा करो, फिर बाद में कहती है नहीं मैं अपनी बारी इस औरत को नहीं देती भाई, तो वो अपने हक में रुजू कर सकती है। तो कहते हैं वह इन रजियत इहदा ज़ौजाती, और अगर बीवियों में से कोई एक बीवी राजी हो गई बितर की कस्मी हा कि वो अपनी तकसीम को छोड़ती है यानी अपनी बारी को छोड़ती है, लिसाहिबती हा अपने साथी के लिए यानी अपनी सौकन के लिए जाजा, तो ये जायज है। लिअन्ना सौदता बिनता ज़मअत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सअलत रसूलल्लाहि अलैहि सलातु वस्सलाम अन युराजिअहा وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها। ام المؤمنين حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنها, یہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دی, تو انہوں نے پھر حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, مجھے مردوں کی حاجت نہیں رہی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ کی زوجات میں شمار کی جاؤں, اس لیے آپ رجوع فرما لیں اور میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں, تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ان سے رجوع فرما لیا تھا۔ تو بعض روایات میں یہ طلاق کا ذکر ہے لیکن عام روایات میں طلاق کا ذکر नहीं है भाई। तो बहरहाल हज़रत सौदा बिनते ज़मअ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दी थी और इसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिया था। मालूम हुआ कोई औरत अपनी बारी दूसरी बीवी को दे सकती है भाई। कहते हैं लिअन्न सौदा बिनते ज़मअ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इसलिए क्योंकि हज़रत सौदा बिनते ज़मअ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है सअलत रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, उन्होंने हुज़ूर अलैहि सलाम से दरख्वास्त की अन युराजिअहा कि वो उनसे रुजू फरमा लें, हुज़ूर ने तलाक दे दी थी, उन्होंने हुज़ूर से दरख्वास्त की कि हुज़ूर उनसे रुजू फरमा लें। वतजअल यौम नौबतिहा लिआइशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये कि वो कर देंगी अपनी बारी का दिन हज़रत आयशा के लिए, वो अपनी बारी किसको देती हैं, हज़रत आयशा को देती हैं। तो ये मैंने बताया बाज रिवायात में तलाक का जिक्र है लेकिन आम रिवायात में तलाक का जिक्र नहीं है भाई। आगे देखिए, वलहा अंतर जियाफी जालिका, और वो औरत जिसने अपनी बारी दूसरी औरत को दे दी थी तो वलहा उसको ये हक है अंतर जियाफी जालिका के वो इसके अंदर रुजू कर सकती है। लिअन्नहा असकतत हक्कन, इसलिए क्योंकि इस औरत ने ऐसा हक साकित किया था, लम यजिब बादु, जो अभी उसके बाद वाजिब ही नहीं हुआ, फला यस्कुतु, लिहाजा वो साकित नहीं होगा। भाई देखिए ना, औरत ने क्या कहा था, एक शख्स की कई बीवियां हैं, उनमें से एक बीवी ने कहा मैं अपनी बारी छोड़ती हूं फला औरत के लिए, मेरे हिस्से की बारी जो है वो भी मैं फला बीवी को देती हूं। तो याद रखो इस सूरत में फिर वो रुजू कर सकती है, इसलिए क्योंकि वो जिन बारियों में रुजू कर रही है वो मुस्तकबिल की बारियां हैं, वो तो अभी आई ही नहीं है। एक बात माजी में गुजर चुकी है उससे तो रुजू नहीं हो सकता, लेकिन जो मुस्तकबिल में अभी आई ही नहीं उससे रुजू हो सकता है, क्योंकि अभी वो बारियां आई ही नहीं। बारियां आई होती और फिर ये अपना हक साकित कर देती तो फिर रुजू नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी तो वो बारियां और रातें आई ही नहीं है, लिहाजा इसके साकित करने से भी जो रातें अभी आई ही नहीं है उनमें उसका हक साकित नहीं हुआ। माजी के अंदर जो गुजर चुकी हैं उनमें तो हक साकित हो चुका था, लेकिन जो रातें अभी आई ही नहीं तो इसके साकित करने से भी वो बारी साकित नहीं हुई, क्योंकि वो अभी आई नहीं, उनका वजूद ही अभी नहीं है, तो अभी तो वो आई ही नहीं है भाई। तो ये माना है ली अन्नहा असकतत हकन, इसलिए क्योंकि इस औरत ने ऐसा हक साकित किया है लम यजिब बादु, जो इस साकित करने के बाद अभी वाजिब ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी रातें आई ही नहीं हैं। फला यस्कुतु, लिहाजा इसके साकित करने से भी वो साकित नहीं हुई, वो रुजू कर सकती है उनमें। बात समझ में आ गई, तर्जमा समझ में आया, तर्जमा फिर देख लो, तर्जमा यहां मुश्किल है। लिअन्नहा असकतत हक्कन, इसलिए क्योंकि इस औरत ने अपना ऐसा हक साकित किया है लम यजिब बादु, जो इस साकित करने के बाद, जो लम यजिब बादु ऐ लम यजिब बाद अल इसकाती, तवज्जो है बादु मुजाफिले चाहता है तो इसके लिए मुजाफिले इसकात यहां महजूफ निकालेंगे फिर तर्जमा सही होगा। लिअन्नहा असकतत हक्कन, इसलिए क्योंकि इस औरत ने अपना ऐसा हक साकित किया है लम यजिब बादु, जो साकित करने के बाद अभी वाजिब ही नहीं हुआ, वो अभी आया ही नहीं है। फला यस्कुतु, तो इसके साकित करने से वो साकित नहीं होगा भाई। आगे देखिए भाई, किताबुर रज़ा, याद रखो ये लफ्ज रज़ा रा के फतहा के साथ भी आप इसे पढ़ सकते हैं और रा के कसरा के साथ, यानी रज़ा पढ़ना भी सही है भाई। और रज़ात कहते हैं बच्चे का मां की छाती से दूध पीना, इसको क्या कहते हैं? रिजात कहते हैं। लेकिन इस्तेलाह शरीयत के अंदर बच्चे का दूध पीना मुद्दत रजात के अंदर, इसको रजात कहते हैं। अरबी जुबान में तो मुतलकन बच्चे का दूध पीना ये क्या कहलाता है? रजात। लेकिन इस्तेलाह शरीयत में और इस्तेलाह फुकहा के अंदर रजात इस चीज का नाम है कि मुद्दत रजात के अंदर अंदर बच्चा दूध पिए तो उसको रजात कहते हैं। तो मुद्दत रजात इंदल अहनाफ, याद रखो दो साल है, दो साल की उम्र के अंदर अंदर बच्चा किसी औरत का दूध भी पी लेगा तो रजात साबित हो जाएगी और वो औरत इसकी रजाई मां बन जाएगी और ये बच्चा उसका रजाई बेटा बन जाएगा। याद रखो बइत्तेफाक अइमा रजात भी मुहरिम है, रजात भी मुहरिम है नसब की तरह, जैसे नसब की वजह से बहुत से रिश्ते हराम हो जाते हैं इसी तरह रजात की वजह से भी बहुत से रिश्ते हराम हो जाते हैं। जैसे नसबी बहन से निकाह हराम है इसी तरह रजाई बहन के साथ भी निकाह हराम है, जैसे नसबी मां के साथ निकाह हराम है इस तरह रजाई मां के साथ भी निकाह हराम है। तो मालूम हुआ रजात भी मुहरिम है नसब की तरह भाई। फुकहा इस बारे में तफसील बयान फरमाते हैं कि कहां कहां हुरमत आएगी रजात की वजह से। तो फुकहा फरमाते हैं कि दूध पिलाने वाली जो है यानी मुर्ज़िया, मुर्ज़िया की तरफ से तो सारे रिश्तेदार बन जाएंगे इस बच्चे के। एक बच्चे ने दो साल की उम्र के अंदर अंदर एक औरत का दूध पिया तो ये औरत इसकी रजाई मां बन गई और ये बच्चा उसका रजाई बेटा बन गया। तो ये औरत क्या है? मुर्ज़िया, दूध पिलाने वाली। और ये जो बच्चा है जिसने दूध पिया है इसको कहेंगे रज़िया, ये क्या है? रज़िया। तो याद रखो फुकहा फरमाते हैं मुर्ज़िया की तरफ से तो सारे रिश्तेदार बन जाते हैं, یعنی مرضعہ بچے کی ماں بن گئی تو مرضعہ کا خاوند بچے کا رضائی باپ بن گیا، اور مرضعہ کی جو بہن ہے وہ بچے کی رضائی خالہ بن گئی، اور رضائی باپ کی جو بہن ہے وہ بچے کی رضائی پھوپھی بن گئی، اور اسی طرح مرضعہ کی جو اولاد ہے وہ اس رضیع کے بھائی بہن بن گئے بھائی. تو مرضعہ کی طرف سے تو سب رشتہ دار بن جاتے ہیں، لیکن رضیع جو ہے رضیع کی طرف سے صرف زوجان اور فروع رشتہ دار بنتے ہیں. یہ ایک شعر لکھ لیجئے، اس میں پورا رضاعت کا قانون ذکر کیا گیا ہے. یہ شعر میں پہلے بھی لکھوا چکا ہوں بھائی، لکھیے بھائی. از جانب شیر دہ، از جانب شیر شین یا را، دہ دال اور گول ہا، از جانب شیر دہ ہما ہا میم ہا، از جانب شیر دہ ہما خے شوند خا وو یا شین، شوند شین وو نون دال، از جانب شیر دہ ہما خے شوند. یہ جو خویش لفظ ہے اس میں واو کو بہت معمولی سا پڑھنا ہے. از جانب شیردہ ہما خیش شوند، دوسرا مصرع، و از جانب شیر خار، و از جانب شیر خار خا واو الفرا شیر خار، زوجان زوجان و فروع و فروع. لکھ لیا، پھر سن لیں. از جانب شیر دہ ہما خیش شوند، و از جانب شیر خار زوجان و فروع. دیکھو معنی سمجھ لیجئے، اس میں پورا رضاعت کا ضابطہ ذکر ہے. از جانب شیر دہ، شیر دہ دودھ پلانے والی، شیر دودھ کو کہتے ہیں فارسی زبان میں. از جانب شیر دہ دودھ پلانے والی کی طرف سے ہما خیش شوند سارے رشتہ دار ہو جاتے ہیں، ہما سارے، خیش رشتے دار. از جانب شیردہ ہما خیش شوند، دودھ پلانے والی کی طرف سے سب رشتے دار بن جاتے ہیں. وہ از جانب شیر خار، اور دودھ پینے والے کی طرف سے زوجان و فروع، میاں بیوی اور ان کی اولاد، میاں بیوی اور اولاد. تو مرضعہ کی طرف سے تو سارے اس کے رشتے دار بن گئے، جبکہ یہ رضیع کی طرف سے صرف میاں بیوی اور ان کی اولاد رشتے دار بنے گی. دودھ پینے والے میں صرف میاں بیوی اور ان کی اولاد جو ہے وہ رشتہ دار بنیں گے. مثلا دودھ پینے والا اگر لڑکا تھا تو یہ بڑا ہوا، اس نے شادی کی، تو یہ دودھ پلانے والی کا رضائی بیٹا ہے، اور اس کی جو بیوی ہے وہ رضائی ماں باپ کے لیے بہو کے درجے میں ہے بھائی. کیونکہ جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے، اسی طرح رضائی بیٹے کی بیوی بھی بہو ہے، تو یہ بہو بھی اپنے سسر پر حرام ہے بھائی، اپنے سسر پر حرام ہے. بیٹا اگر چھوڑ بھی دے اس کو اور بعد میں اس کا جو رضائی سسر ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، نہیں، اب اس کی کوئی صورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو دودھ پینے والا رضائی بیٹا بنا تھا اور اس کی بیوی کیا بن گئی؟ بہو بن گئی. دیکھو میاں بیوی دونوں حرام. یا اسی طرح اگر دودھ پینے والی لڑکی تھی تو یہ بڑی ہوئی، اس نے نکاح کر لیا، تو وہ جو جس آدمی سے نکاح کیا وہ اس لڑکی کے رضائی ماں باپ کے لیے داماد کے درجے میں ہوا. اور جیسے حقیقی داماد جو ہے وہ اپنی ساس پر حرام ہوتا ہے، اسی طرح رضائی بیٹی کا جو داماد ہے وہ بھی ساس پر حرام ہے. تو دیکھا میاں بیوی دونوں حرام ہوتے ہیں، اور نیز ان کی جو اولاد ہے وہ ان کے لیے رضائی پوتے پوتیاں اور رضائی نواسے نواسیاں ہیں، لہذا وہ بھی ان پر، یہ جو رضائی ماں باپ پر حرام ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی دیکھیے بھائی، کتاب الرضائی. قال قلیل الرضاعی وکثیرہ سواء. صاحب قدوری فرماتے ہیں قلیل الرضاعی وکثیرہ سواء، کہ تھوڑی رضاعت ہو یا زیادہ یہ سب برابر ہیں، ان سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. یاد رکھیے، آگے چل کر صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کی وجہ سے تب حرمت ثابت ہوگی جب کم از کم پانچ مرتبہ بچہ عورت کا دودھ پیے. کتنی مرتبہ؟ پانچ مرتبہ بچہ عورت کا دودھ پیئے پھر حرمت ثابت ہوگی، صرف ایک دفعہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. और नीज वो फरमाते हैं एक मजलिस में बच्चा जितनी दफा भी दूध पी ले उसको एक ही शुमार करेंगे। तो मालूम हुआ पांच अलग अलग मजलिसों में एक बच्चा एक औरत का दूध पिएगा तो फिर ये औरत इसकी रिजाई मां बनेगी, उससे पहले ये उसकी रिजाई मां नहीं है। लेकिन हमारे नजदीक मुतलकन रजाअत जो है वो मुहरिम है। थोड़ा सा दूध भी अगर बच्चे के पेट तक पहुंच गया चाहे कतरा ही क्यों ना हो रजाअत साबित हो जाएगी और ये बच्चा उस औरत का रिजाई बच्चा बन जाएगा और वह औरत इसकी रिजाई मां बन जाएगी। भाई तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं कलील उर रजाई व कसीर हूं सवा उनके थोड़ी रजात और ज्यादा ये सब बराबर हैं। इदा हसला फी मुद्दत रजाई जब ये रजात हासिल हो मुद्दत रजात में यानी दो साल के अंदर अंदर बच्चा दूध पिएगा फिर वो औरत उसकी रजाई मां बनेगी। कहते हैं इजा हसला फी मुद्दत रजाई जब ये रजात मुद्दत रजात के अंदर हासिल हो यानी उसके अंदर पाई जाए ये ताल्लुक बिही तहरीम हो तो इस रजात के साथ तहरीम का हुक्म मुताल्लिक हो जाएगा इसकी वजह से हुरमत आ जाएगी। वकाल शाफी रहिमहुल्ला और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ला यस्बुतु तहरीम इल्ला बिखम्सि रजातिन के तहरीम साबित नहीं होगी मगर पांच मरतबा दूध पीने से। तहरीम हर्रम युहर्रिमु तहरीम का क्या माना है हराम करना। वकाल शाफी रहमहुल्ला और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ला यस्बुतु तहरीम इल्ला बिखम्सि रजातिन के तहरीम जो है वो साबित नहीं होगी मगर पांच मरतबा दूध पीने से। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम व वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की आपने फरमाया ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सतानी वलल इमलाजतु वलल इमलाजतानी। याद रखो मस्सतुन स्वाद के साथ है मस्सुन ये बच्चे का फेल है यानी बच्चे का दूध चूसना इसको क्या कहते हैं मस्सुन। और इमलाजतुन इमलाज कहते हैं औरत के फेल को यानी औरत का बच्चे को दूध पिलाना। तो एक बच्चे का फेल है दूध का चूसना और एक औरत का फेल है यानी दूध पिलाना। तो बच्चे के फेल को क्या कहते हैं मस्सुन और औरत के फेल को क्या कहते हैं इमलाजुन यानी दूध पिलाना। और याद रखो मस्सतुन और इमलाजतुन आया हदीस के अंदर इन दोनों में ये जो ता है ये वहदत की है। मस्सतुन का माना है एक मर्तबा बच्चे का दूध चूसना और इमलाजतुन का माना है एक मर्तबा औरत का बच्चे को दूध पिलाना। तवज्जो है तो ये ता किस लिए है वहदत के लिए है। तो हदीस चल रही है हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सतानी के हराम नहीं करता बच्चे का एक मर्तबा दूध चूसना वलल मस्सतानी और ना दो मर्तबा दूध चूसना। बच्चे के एक मर्तबा दूध चूसने से या दो मर्तबा दूध चूसने से हुरमत साबित नहीं होती। वलल इमलाजतु वलल इमलाजतानी और ना एक मर्तबा औरत का दूध पिलाना वलल इमलाजतानी और ना दो मर्तबा दूध पिलाना। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील साहिबे हिदाया जिक्र फरमा रहे हैं कि एक या दो मर्तबा बच्चे के दूध पीने से हुरमत साबित नहीं होती। ये किसके अंदर आ गया हदीस के अंदर आ गया। हदीस का तर्जमा समझ में आया ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सतानी वलल इमलाजतु वलल इमलाजतानी न एक मर्तबा का चूसना हराम करता है और न दो मर्तबा का चूसना वलल इमलाजतु वलल इमलाजतानी और न एक मर्तबा का दूध पिलाना हराम करता है और न दो मर्तबा का दूध पिलाना। तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील के तौर पर साहिब हिदाया ने इस हदीस को जिक्र किया। लेकिन इस पर इश्काल होता है कि ए साहिब हिदाया आपने इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मजहब जिक्र किया कि पांच मरतबा बच्चा दूध पिएगा तो फिर हुरमत साबित होगी लेकिन हदीस के अंदर तो सिर्फ यह जिक्र है कि एक या दो मरतबा के पीने से हुरमत साबित नहीं होती। इसमें तो कोई पांच मरतबा का जिक्र नहीं है भाई। तो उसका जवाब देते हैं मुहशी हजरात वो फरमाते हैं कि यहां पर हमारे नजदीक रजात कलील हो या कसीर हो हुरमत साबित हो जाएगी। एक कतरा दूध भी बच्चे के पेट में पहुंच गया तो हुरमत साबित हो जाएगी जबकि इमाम शाफी ने मौला के नजदीक पांच मरतबा बच्चा दूध पिएगा फिर हुरमत साबित होगी। तो ये जो दलील जिक्र की है साहिब हिदाया ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह की तरफ से इसके जरिए सिर्फ अहनाफ के मजहब का रद्द करना मकसूद है कि ए अहनाफ, आप तो कहते हो कि एक कतरा भी बच्चे के पेट में पहुंच गया तो हुरमत साबित हो जाएगी, लेकिन हदीस में तो क्या आ रहा है, एक या दो मर्तबा के दूध पीने से हुरमत साबित नहीं हो सकती। तो जब इस हदीस के जरिए अहनाफ का मजहब रद्द हो गया तो खुद ब खुद शवाफे का मजहब साबित हो गया, क्योंकि यहां यही तो इख्तिलाफ था। उनके नजदीक पांच रजातें होनी चाहिए, हमारे नजदीक एक रजात भी काफी है। तो जब हमारा मजहब रद्द हो गया तो खुद ब खुद उनका मजहब साबित हो गया, क्योंकि क्योंकि दरमियान में कोई तीसरा कौल तो यहां पर नहीं है। भाई बात समझ में आ गई। तो बहरहाल इस हदीस के अंदर सिर्फ यह जिक्र है कि एक या दो मरतबा के दूध के पीने से रजात साबित नहीं होती। आगे देखिए, वलना, और हमारी दलील जो है कौलुहु ताला, अल्लाह ताला का यह कौल है, वह उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम, और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। कुरान में अल्लाह ताला उन औरतों का जिक्र फरमा रहे हैं जिनसे निकाह हराम है, और उन औरतों में अल्लाह ने जिक्र फरमाया वह उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम, तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है वो भी तुम्हारे लिए हराम है। और देखो यहां पर इर्ज़ा मुतलक जिक्र है कि जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, यह जिक्र नहीं है कि दो मर्तबा या तीन मर्तबा या पांच मर्तबा का जिक्र यहां पर नहीं। तो मुतलकन रिजात जो है वो उससे हुरमत साबित हो जाएगी। याद रखो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के लिए यह जो हदीस जिक्र की, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मजहब तो यह है कि पांच रजातों से हुरमत साबित होगी। उनकी दलील हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये जो कुरान के अंदर मुतलकन आया है वह उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम, तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, पहले इस आयत के अंदर दस रजातों का जिक्र था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुरान के अंदर अशरा रजात इन मालूमात इन का जिक्र था। कुरान में क्या जिक्र था? आशरा रजात इन मालूमात, इनके दस मालूम रजातें ये हुरमत साबित करती हैं। फिर उसके बाद ये कुरान का हुक्म मनसूख हुआ और फिर पांच रजातों का हुक्म बाकी रहा कि पांच मालूम रजातें वो हुरमत साबित करती हैं। ये हदीस में आता है, हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है। और ये कहते हैं मामला फिर इसी तरह रहा हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक। हदीस आयशा में क्या जिक्र आता है कि हुरमत के सिलसिले में अव्वलन कुरान में क्या था, दस मालूम रजातें होंगी फिर हुरमत साबित होगी, फिर उसके बाद वो हुक्म मनसूख हो गया और कितने का हुक्म आ गया, पांच मालूम रजातों वाला हुक्म आ गया, और हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक हुक्म इसी तरह था। ये किस हदीस में है? हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस में है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं देखो हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस में आ रहा है कि यह आयत मुतलक नहीं थी, इसमें दस मालूम रजातों का जिक्र था, फिर दस में से पांच जो हैं वो मनसूख हो गई और पांच मालूम रजातों को मुहरिम करार दिया गया, और हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक हुक्म इसी तरह था। मालूम हुआ पांच मालूम रजातें पाई जाएंगी तब ही हुरमत साबित होगी। बात समझ में आ गई। हम जवाब देते हैं कि कुरान के अंदर वह उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम ये मुतलक है भाई, और आपकी हदीस जो है वो खबर वाहिद है, और खबर वाहिद जो है उसके जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती जायज नहीं, और नीज ये ज्यादती भी नसख के दर्जे में है। गोया आप इस हदीस के जरिए किताबुल्लाह के इतलाक को मनसूख करार दे रहे हैं। किताबुल्लाह में तो मुतलक आया, उसमें तो पांच रजातों का जिक्र नहीं है, उससे तो इतना पता चला जो भी दूध पिला दे मालूम हुआ वो रिजाई मां बन गई भाई। तो गोया आप खबर वाहिद के जरिए किताबुल्लाह के इतलाक को मनसूख करार दे रहे हैं, हालांकि खबर वाहिद के जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती और किताबुल्लाह का नसख जायज नहीं है भाई। और नीज उलमा जवाब देते हैं कि यह हदीस काबिले इस्तेदलाल नहीं है। वजह यह कि इस हदीस की बाज रिवायतों के अंदर तो यह भी जिक्र है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक इस आयत को लोग इसी तरह तिलावत करते थे, यानी उसमें पांच रिजातों का लफ्ज बाकायदा जिक्र था। हालांकि शवाफिया भी यहां पर ये आयत व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम इसी तरह पढ़ते हैं, वो यहां खमसा रज़ात इन मालूमात इनका लफ्ज़ वो यहां पर नहीं पढ़ते। मालूम हो उनके नजदीक भी यह हदीस काबिल अमल नहीं है। अगर उनके नजदीक यह हदीस काबिल अमल होती फिर तो खमसा रज़ात इन मालूमात इनका लफ्ज़ होना चाहिए था यहां पर, लेकिन वो भी इस लफ्ज़ को कुरान में नहीं पढ़ते। तो इसकी तो बाज़ रिवायतों में क्या जिक्र है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक इसी तरह लोग तिलावत करते थे, फिर तो उनको भी क्या करना चाहिए था, खमसा रज़ात इन मालूमात इनकी तिलावत करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी उसकी तिलावत नहीं करते। मालूम है उनके नजदीक भी यह हदीस हुज्जत नहीं है, वो इस पर अमल नहीं करते। शवाफे फिर जवाब देते हैं कि खमसा रज़ात इन मालूमात इनकी तिलावत मनसूख हो चुकी है लेकिन उसका हुक्म बाकी है। वो क्या कहते हैं, तिलावत मनसूख हो चुकी है लेकिन हुक्म बाकी है। हम कहते हैं नहीं, यहां कोई करीना मौजूद नहीं है कि तिलावत मनसूख हो चुकी है, बल्कि मैंने आपको जैसे बतलाया कि इसी हदीस की बाज रिवायतों में तो यह लफ्ज भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक लोग इसी तरह तिलावत करते थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद तो नसख नहीं हो सकता भाई। शवाफे क्या कहते हैं, तिलावत मनसूख है और हुकाम बाकी है। तो इसी हदीस की बाज़ रिवायतों में क्या आ रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक लोग इसी तरह तिलावत करते थे जी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद तो फिर नसख नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। मालूम हुआ यह हदीस काबिले इस्तेदलाल नहीं है भाई, यह हदीस काबिले इस्तेदलाल नहीं है भाई। बस उलमा फिर यह जवाब देते हैं कि हां शुरू में 10 रजातों को मुहरिम करार दिया गया था, फिर 10 के बजाय 5 का हुक्म आ गया, 5 रजातों को मुहरिम करार दिया गया, और आखिर में वह आयत भी मनसूख हो गई और मुतलकन रजात को मुहरिम करार दे दिया गया, जैसा कि इस वक्त कुरान में मौजूद है, वह उम्महातुकुमुल्लाती अरज़ानकुम तुम्हारी वो माए जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। मालूम मुतलकन रजात हो तो हुरमत आ जाएगी, तो किताबुल्लाह पर ही अमल किया जाएगा, और किताबुल्लाह में अल्लाह फरमाते हैं वह उम्महातुकुमुल्लाती अरज़ानकुम तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया। इसमें मुतलकन दूध पिलाने का जिक्र है, 5 मरतबा का यहां पर जिक्र नहीं है। लिहाजा मुतलकन कोई औरत किसी बच्चे को मुद्दत रजात में दूध पिलाएगी तो हुरमत साबित हो जाएगी जी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलाना, और हमारी दलील जो है कौलहू ताला, अल्लाह ताला का ये कौल है, वह उम्महातुकुमुल्लाती अरज़ानकुम और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, अल आया व कौलहू अलैहि सलातु वसलाम, और नीज हमारी दलील हुजूर अलैहिस्सलाम का ये कौल है, हुजूर फरमाते हैं यहरुमु मिनर रज़ाई मा यहरुमु मिनन नसब, कि रजात की वजह से हराम हो जाता है वो जो कि हराम होता है नसब की वजह से, कि रजात की वजह से वो सब रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से हराम थे जी। तो इस हदीस को जहन में रखें भाई, आगे साहिब हिदायत बार बार इस हदीस का हवाला देंगे कि हुजूर क्या फरमाते हैं, यहरुमु मिनर रज़ाई मा यहरुमु मिनन नसब, रजात की वजह से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं। जैसे नस्बी मां से निकाह हराम, इसी तरह रिजाई मां से भी निकाह हराम। जैसे नस्बी औलाद से निकाह हराम, इसी तरह रिजाई औलाद से भी निकाह हराम है। आगे देखिए, कहते हैं मिन गैरी फसलिन, बगैर किसी फसल और फर्क के, बगैर किसी फर्क के, कुरान के अंदर भी जो आया व उम्महातुकुमुल्लाती अरज़ानकुम, यहां भी कलील और कसीर में कोई फर्क नहीं किया गया, आयत मुतलक है, और नीज हदीस में जो आया यहरुमु मिनर रज़ाई मा यहरुमु मिनन नसब, इसके अंदर भी रजात मुतलकन जिक्र है, यहां कलील और कसीर का कोई फर्क नहीं किया गया। तो ना कुरान के अंदर फर्क है और ना हदीस के अंदर कोई फर्क किया गया है कलील और कसीर का, और हमारा भी यही मजहब है कि रजात चाहे कलील हो चाहे कसीर हो कोई फर्क नहीं है, हर हाल में इससे हुरमत साबित हो जाएगी। ये माना है मिन गैरी फसलिन, बगैर कोई फर्क किए, यानी कलील और कसीर में। और याद रखो ये मिन गैरी फसलिन का ताल्लुक दोनों से है, माकबल में जो आयत गुजरी और इसी तरह माकबल में जो हदीस गुजरी, दोनों के साथ है कि दोनों में कलील और कसीर में कोई फर्क नहीं किया गया। मालूम हुआ रिजात चाहे कलील हो चाहे कसीर हो हर सूरत में हुरमत साबित हो जाएगी। वली अन्न अलहुर्मत व इन कानत ले शुभ तिल बाजियती। याद रखो माकबल में दो नकली दलीलें जिक्र की यानी कुरान और हदीस। साहिब हिदाया ने अहनाफ के लिए माकबल में दो नकली दलीलें जिक्र की, वली अन्न अलहुर्मता यहां से अकली दलील भी जिक्र फरमा रहे हैं और नीज एक एतराज का जवाब भी दे रहे हैं। नीज एक एतराज का जवाब भी दे रहे हैं, यानी शवाफे एतराज करते हैं अहनाफ पर कि ए अहनाफ मुनासिब यह है कि कलील रजात के जरिए हुरमत साबित नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि यह रजात की वजह से हुरमत इसलिए आती है कि बच्चा जब दूध पीता है तो इस दूध की वजह से उसकी हड्डियां बनती हैं और उसका गोश्त बनता है। तवज्जो है, तो हड्डियां और गोश्त बनने की वजह से वो बच्चा जो है उस औरत का जूस बन जाता है। उस बच्चे ने औरत का दूध पिया और वो दूध क्या बन गया, हड्डियां और गोश्त बन गया, तो ये बच्चा क्या बन गया, औरत का जूस बन गया। और अपना जूस तो इंसान पर हराम होता है, इसलिए यहां पर हुर्मत आ गई। बच्चा जब दूध पीता है तो इस दूध से उसकी हड्डियां और गोश्त बनते हैं, गोया ये बच्चे का जूस बन गया, ये दूध बच्चे का जूस बन गया, और ये दूध तो जूस था उस औरत का, तो औरत का जूस बच्चे का जूस बन गया। मालूम हुआ ये बच्चा औरत का जूस है भाई, ये बच्चा क्या बन गया, क्योंकि इस औरत का जूस बच्चे के जिस्म का हिस्सा बन गया, तो ये बच्चा भी उसके लिए जूस हो गया, और जूस जो है इंसान पर हराम होता है, इसलिए यहां पर हुर्मत आ जाती है। जैसे अपनी नस्बी औलाद इंसान पर हराम होती है क्योंकि वो इसी का जूस है भाई, तो इसी तरह ये रिजाई बच्चा भी अपना जूस बन गया, लिहाजा यहां भी हुर्मत आएगी। तो शवाफे एतराज करते हैं अहनाफ पर कि अहनाफ ये जो रिजायत की वजह से हुरमत आती है वो इसलिए आती है क्योंकि इस दूध की वजह से बच्चे के गोश्त और हड्डियां बनते हैं, और कलील दूध के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, एक आध कतरा पिया है उससे तो ऐसा नहीं हो सकता कि उससे हड्डियां और गोश्त बने। मालूम हुआ कसीर दूध पिएगा, यानी जैसे हमने जिक्र किया कम से कम 5 मरतबा दूध पिएगा, तो फिर हम कहेंगे कि अब इतना दूध है कि इससे यकीनन इसके गोश्त और हड्डियां बनी होंगी, फिर हुरमत आनी चाहिए, लिहाजा कलील के अंदर तो हुरमत नहीं आनी चाहिए। तो इसका जवाब देंगे साहिब हिदाया कि हां आपकी बात हमें तस्लीम है कि जो हुरमत आती है ये इस वजह से आती है कि दूध की वजह से बच्चे के नशो नुमा होती है, वो बच्चे का जूस बन जाता है, और ये दूध तो जूस था उस औरत का, तो औरत का जूस बच्चे का जूस बन गया। मालूम हुआ ये बच्चा औरत का जूस है भाई, ये बच्चा क्या बन गया, क्योंकि इस औरत का जूस बच्चे के जिस्म का हिस्सा बन गया, तो ये बच्चा भी उसके लिए जूस हो गया, तो ये बच्चा क्या बन गया, औरत का जूस बन गया, और अपना जूस तो इंसान पर हराम होता है, इसलिए यहां पर हुर्मत आ गई। लेकिन ये दूध बच्चे का जूस बनता है ये एक अमरे खफी है, ये हमारे सामने जाहिर नहीं, और लिहाजा हुक्म की बुनियाद अमरे खफी पर नहीं रखी जाएगी बल्कि अमरे जाहिर पर रखी जाएगी, और अमरे जाहिर तो दूध पिलाना है, तो लिहाजा दूध पिलाने को ही हुर्मत का सबब करार दिया जाएगा। भाई बच्चा दूध पीता है वो दूध इसकी हड्डियां और गोश्त बनाएगा, लेकिन ये तो एक अमरे खफी है, हमें तो ये नजर नहीं आता, हुर्मत तो इसी की वजह से आती है, ये हमें भी तस्लीम है, लेकिन ये एक अमरे खफी है, जाहिर नहीं है, और अमरे खफी पर हुक्म की बुनियाद नहीं रखी जाएगी बल्कि हुक्म तो जाहिर पर लगाया जाएगा, और जाहिर में तो उस औरत ने बच्चे को दूध पिलाया है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना पिलाया हो, तो रिजात तो पाई जा रही है, लिहाजा हुर्मत आ जाएगी। तो कहते हैं वली अन नल हुरमता, और इसलिए क्योंकि ये जो हुरमत है वह इन कानत लि शुभ तिल बाजियत साबित बि नुशूर अजमी व इम्बातिल लहमी। नुशूर भाई नशरा यन शुरू नुशूरन का माना है जिंदा करना, क्यामत में अल्लाह ताला लोगों को जिंदा फरमाएंगे, इसको कहते हैं नुशूर भाई। तो नुशूर का क्या माना, जिंदा करना, तो यहां नुशूर आजम का जिक्र आया, हड्डियों का जिंदा करना, मुराद है हड्डियों का मजबूत करना, हड्डियों का मजबूत करना मुराद है। वह इम्बातिल लहम का जिक्र आगे आ रहा है, अम्बत युम्बित, तो इम्बात का माना है उगाना, जैसे बारिश सब्जा उगाती है, तो इम्बातुल लहम का माना क्या है, गोश्त उगाना, यानी गोश्त की नशो नुमा होना, गोश्त की नशो नुमा होना, बात समझ में आ रही है। बच्चा दूध पिएगा तो उससे उसके गोश्त की नशोनुमा होगी, उसकी हड्डियां बनेंगी, उसकी हड्डियां जिंदा होंगी यानी हड्डियां मजबूत होंगी। तवज्जो है। अब तर्जमा देखिए, कहते हैं वली अन नल हुरमता, इसलिए क्योंकि ये जो हुरमत है रिजायत की वजह से, व इन कानत ली शुबहतिल बाजियती, बाजियत का तर्जमा कर लें जुजियत के, बाजियत बाज होना यानी जुज होना। तो कहते हैं वली अन नल हुरमता, इसलिए क्योंकि ये वली हुरमत जो रिजायत से आ रही है, व इन कानत ली शुबहतिल बाजियती, अगरचे ये जुजियत के शुबे की वजह से है कि ये बच्चा उनका क्या बन गया है जुज, तो अगरचे ये जो हुरमत आ रही है ये जुजियत के शुबे की वजह से है, वो जुजियत असाबितति बिनुशूरिल अज़्मी व इंबातिल लहमी, जो हड्डियों के मजबूत करने और गोश्त की नशो नुमा से साबित होती है। ये दूध बच्चा पिएगा तो इससे गोश्त की भी नशो नुमा होगी और हड्डियों की भी नशो नुमा होगी, तो लिहाजा इससे जुजियत साबित हो जाएगी। इससे क्या साबित होगी? जुजियत साबित हो जाएगी। लेकिन ये तो एक अमरे खफी है कि दूध ने गोश्त और हड्डी को बढ़ाया है या बढ़ाया नहीं, ये एक अमरे मुबतीन है, तो इस पर हुक्म का मदार नहीं होगा, बल्कि हुक्म का मदार जाहिर पर यानी दूध पिलाने पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब फिर एक दफा तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वली अन नल हुरमता, इसलिए क्योंकि ये जो हुरमत आई है रिजायत की वजह से, व इन कानत ली शुबहतिल बाजियती, अगरचे ये उस जुजियत के शुबे की वजह से है, वो जुजियत असाबितति बिनुशूरिल अज़्मी व इंबातिल लहमी, जो हड्डियों के बढ़ने और गोश्त की नशो नुमा से साबित होती है, वो जुजियत जो इससे साबित होती है, लेकिन नहु अमरुम मुबतनुन, लेकिन ये तो एक खफी मामला है, एक बातिनी मामला है, छुपा हुआ मामला है। फतअल्लकल हुक्म बिफ़िअलिल इरज़ाई, लिहाजा इस हुक्म का ताल्लुक इरज़ा के साथ हो जाएगा। ये हुरमत अगरचे जुजियत की वजह से आई है लेकिन वह एक अमरे खफी है, लिहाजा इस हुरमत का ताल्लुक इरज़ा यानी दूध पिलाने से ही होगा। दूध पिला दिया तो हम कहेंगे कि हुरमत आ गई भाई। तो कहते हैं फतअल्लकल हुक्म बिफ़िअलिल इरज़ाई, लिहाजा ये हुरमत वाला हुक्म मुतअल्लिक हो जाएगा दूध पिलाने के फेल से। वमा रवाहु मर्दूदुम बिल किताबी, और वो हदीस जिसको रिवायत किया इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने, मर्दूदुन बिल किताबी, उसको रद्द किया जाएगा किताबुल्लाह के जरिए, औ मनसूखुन बिही, या ये मनसूख है किताबुल्लाह के जरिए। वो जो हदीस जिक्र की, ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सतानी वलल इमलाजतु वलल इमलाजतानी, हम जवाब देते हैं कि इस हदीस में है कि एक दो मर्तबा के दूध पिलाने से हुरमत साबित नहीं, और किताबुल्लाह के अंदर क्या आया, वह उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम, तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, यह मुतलक है, इसमें कोई कलील और कसीर की कैद मौजूद नहीं है। तो ये जो हदीस है ये आयत नाजिल होने से पहले की हदीस होगी या उसके बाद की होगी, दो ही सूरतें हैं ना, हदीस पहले आई और किताबुल्लाह बाद में, या किताबुल्लाह पहले है और हदीस बाद में है। तो अगर ये हदीस पहले है और किताबुल्लाह बाद में आई है तो किताबुल्लाह तो मुतलक है, मालूम हो किताबुल्लाह ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया। हदीस में तो क्या था, एक दो मर्तबा का दूध पिलाना हुरमत साबित नहीं करता, लेकिन फिर उसके बाद कुरान की आयत आ गई और उसमें मुतलकन रिजात को हुरमत का सबब करार दिया गया, तो मालूम हुआ किताबुल्लाह के जरिए हदीस क्या हो गई, मंसूख। और अगर इसका बरअक्स मान लें, किताबुल्लाह के अंदर जो हुक्म था वो पहले था और हदीस बाद में आई, तो उसका हम जवाब ये देते हैं कि एक तरफ है किताबुल्लाह और दूसरी तरफ हदीस है, और यह हदीस खबर वाहिद है, यह हदीस तो किताबुल्लाह के अंदर हुक्म मुतलक है, तो इस हदीस जो खबर वाहिद है इसके जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती नहीं की जा सकती भाई, यह ज्यादती भी नसख के दर्जे में है और खबर वाहिद के जरिए तो किताबुल्लाह को मनसूख करार नहीं दिया जा सकता भाई। बात समझ में आ गई। तो अगर इस हदीस को किताबुल्लाह से पहले करार दिया जाए तो फिर किताबुल्लाह ने आकर इसको मनसूख कर दिया, और अगर इस हदीस को किताबुल्लाह के बाद करार दिया जाए तो इस सूरत में यह खबर वाहिद है और खबर वाहिद के जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती जायज नहीं है। कहते हैं वमा रवाहु मर्दूदुम बिल किताबी, और वो हदीस जिसको इन्होंने रिवायत किया मर्दूदुम बिल किताबी, उसको रद्द किया जाएगा किताबुल्लाह के जरिए। अगर किताबुल्लाह पहले है और यह हदीस बाद में है तो भी किताबुल्लाह पर ज्यादती जायज नहीं इस खबर वाहिद के जरिए, तो यह हदीस इसको रद्द किया जाएगा किताबुल्लाह के जरिए। और मनसूखुन बिही, या अगर किताबुल्लाह बाद में है तो इस किताबुल्लाह के जरिए यह हदीस मनसूख होगी। और मनसूखुन बिही, यह हदीस मनसूख होगी किताबुल्लाह के जरिए। वयम बगी अन यकून फी मुद्दति रजाअ लिमा नुबय्यिनु, और मुनासिब यह है कि ये जो रजाअत है इस ये मुद्दत रजाअत के अंदर होनी चाहिए। लिमा नुबय्यिनु, उस वजह से जो हम बयान करेंगे। भाई मतन में आया था, मतन में कलीलुर रजाई व कसीरुहु सवाउन, थोड़ी या ज्यादा रजात सब बराबर हैं। इदा हसल फी मुद्दतिर रजाई, के जब ये रजात कब पाई जाए, मुद्दत रजात के अंदर। अब उसी को बयान करने लगे हैं साहिब हिदाया, तो फरमाते हैं वयम बगी, और मुनासिब यह है अयकू नफी मुद्दत रजाई, कि यह रजात मुद्दत रजात के अंदर होनी चाहिए। लिमा नुबयिनु, उस वजह से जो हम बयान करेंगे। अगली सतर में वो बयान फरमा रहे हैं, तो कहते हैं सुम मुद्दत रजाई सलासून शहरन इंद अबी हनीफत रहिमहुल्ला वकाला सनतानी वहु कौलु शाफई रहिमहुल्ला वकाला जुफर रहिमहुल्लाहु सलासतु अहवालिन। मुद्दत रजात कितनी है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमल्ला के नजदीक मुद्दत रजात जो है वो 30 महीने हैं, यानी 2.5 साल। मुद्दत रजात कितनी है? 30 महीने यानी 2.5 साल है इमाम आजम अबू हनीफा रहमल्ला के नजदीक, जबकि साहिबैन और इमाम शाफी रहमल्ला फरमाते मुद्दत रजात 2 साल है, 2 साल है। और जबकि इमाम जुफर रहमल्ला फरमाते मुद्दत रजात 3 साल है। भाई 3 साल के अंदर अगर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पी लेगा तो रजात साबित हो जाएगी। ये किसके नजदीक? इमाम जुफर रहमहुल्ला। मजाहिब समझ में आ गए, इमाम साहब के नजदीक कितनी मुद्दत है? 30 महीने यानी 2.5 साल। साहिबैन और इमाम शाफी रहमहुल्ला के नजदीक 2 साल, और इमाम जुफर रहमहुल्ला के नजदीक 3 साल। भाई अब देखिए सबकी दलीलें जिक्र करेंगे। कहते हैं सुम मुद्दत रजाई सलासून शहरन इंद अबी हनीफत रहमहुल्ला, फिर मुद्दत रजात जो है वो 30 महीने हैं इमाम साहिब के नजदीक। वकाला सनतानी, और साहिबैन फरमाते हैं 2 साल हैं। वह हुआ कौलु शाफी रहमहुल्ला, और यही कौल है इमाम शाफी रहमहुल्ला का भी। वकाल जुफर रहमहुल्लाहु सलासतु अहवालिन, और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं 3 साल हैं। सलासतु अहवालिन, याद रखो हौल साल को कहते हैं। हौल किसे कहते हैं? साल। तो सलासतु अहवाल यानी 3 साल। इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं 3 साल हैं। याद रखो मुद्दत रजात के अंदर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पिएगा तो रजात साबित हो जाएगी, और इस मुद्दत के बाद दूध पिलाना हराम है। यह मसला याद रखना, इस मुद्दत के बाद दूध पिलाना हराम है। अब हर एक की दलील देखिए। कहते हैं हौला हसन लितहव्वुल मिन हालिन इला हालिन। इमाम जुफर रहमहुल्ला की दलील पहले बयान फरमा रहे हैं। अभी मैंने बताया मुद्दत रजात कितनी है? 3 साल इमाम जुफर रहमहुल्ला के नजदीक। तो इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल वालिदातु युर्ज़िना औलादहुन्ना हौलैनी कामिलैनी, कि माएं जो हैं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। इससे मालूम हुआ कि कम से कम 2 साल दूध पिलाना ये बच्चे का हक है। बच्चे का हक क्या है? कि मां इसको 2 साल तक कम से कम दूध पिलाए। तो ये 2 साल हुए, ये तो बच्चे का हक है, ये तो दूध पिलाया ही जाएगा। उसके बाद कुछ मजीद मुद्दत भी चाहिए जिसके अंदर बच्चे को दूध से छुड़ाकर दूसरी गजा पर यानी रोटी वगैरह खाने पर उसको लगाया जाए। भाई 2 साल तक तो बच्चे को दूध पिलाया है, अब उसके बाद बच्चे को दूसरी गजा का आदि बनाना है, रोटी वगैरह का उसको आदि बनाना है, तो उसके लिए भी कुछ मुद्दत चाहिए। उसके लिए भी कुछ मुद्दत चाहिए जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता दूध पिलाने को कम किया जाए और रोटी खिलाने को बढ़ाया जाए, यहां तक कि बच्चा उस मुद्दत के अंदर पूरी तरह रोटी का आदि हो जाए। और इसका अंदाजा इमाम जुफर ने एक साल के साथ लगाया है। तो दो साल रजाअत वाले और उसके बाद ये एक साल जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का दूध छुड़ाया जाएगा और उसे रोटी का आदि बनाया जाएगा, तो ये भी वो साथ मिलाते हैं। तो कुल कितनी मुद्दत हो गई? तीन साल हो गई। यानी दो साल तो बच्चे का हक है, उसको क्या किया जाए? दूध पिलाया जाए और उसके बाद फिर उसका दूध आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाया जाए भाई। तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक मुद्दत रजाअत तीन साल है। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं, वो फरमाते हैं, ले अन अल हौला, इसलिए क्योंकि हौल यानी साल जो है हसनुन अच्छा है, लि तहव्वुली, तहव्वुल का माना है मुंतकिल होना, बदलना पलटना, लि तहव्वुली पलटने के लिए, मिन हालिन इला हालिन, एक हाल से दूसरे हाल की तरफ। इमाम जुफर अमला की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं एक साल का वक्त ये अच्छी मुद्दत है जिसमें एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल हुआ जा सकता है, जिसमें एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल हुआ जा सकता है। चुनांचे इसीलिए जकात भी एक साल गुजरने के बाद वाजिब की जाती है, चुनांचे इसीलिए इन्नीन को भी एक साल का वक्त दिया जाता है कि एक साल ऐसी मुद्दत है जिसमें एक हालत से दूसरी हालत की तरफ मुंतकिल हुआ जा सकता है। तो कहते हैं, लिअन्न الحول حسن للتحول من حال الى حال, इसलिए क्योंकि एक साल वो अच्छा है बच्चे के मुंतकिल होने के लिए एक हाल से दूसरे हाल की तरफ, वला बुद्द मिन الزیادتی على الحولین لما نبین, और जरूरी है ज्यादती على الحولین दो सालों पर, لما نبین उस वजह से जो हम बयान करेंगे, दो सालों पर ज्यादती जरूरी है। कुरान में तो दो साल जिक्र है लेकिन दो साल पर ज्यादती जरूरी है, और वो वजह मैंने जिक्र कर दी कि बच्चा पहले सिर्फ दूध पर जिंदा था, अब दूध से इसको मुंतकिल करना है दूसरी गजा की तरफ, तो उसके लिए भी कुछ वक्त चाहिए, और उसका अंदाजा किससे लगाया है इमाम जुफर ने? एक साल के साथ। तवज्जो है। तो कहते हैं, वला बुद्द मिन ज्यादती अलल हौलैन लिमा नुबय्यिन, और दो साल पर ज्यादती जरूरी है उस वजह से जो हम बयान करेंगे। मैंने तो बयान कर दिया कि ये एक जायद साल क्यों होना चाहिए, एक गजा से दूसरी गजा की तरफ मुंतकिल होने के लिए। बात समझ में आ गई। तो साहिब हिदायत तो आगे जिक्र फरमाएंगे लेकिन मैंने यहीं पर आपको बतला दिया भाई। तो इमाम जुफर फरमाते हैं, वला बुद्द मिन ज्यादती अलल हौलैन, कि दो साल पर ज्यादती जरूरी है। कुरान में तो दो साल का जिक्र आता है, वल वालिदातु युर्ज़िअन औलादहुन्न हौलैन कामिलैन, कि वालिदाएं जो हैं वो अपनी औलाद को कामिल दो साल दूध पिलाएं। लेकिन इमाम जुफर फरमाते हैं इस दो साल से मजीद भी कुछ वक्त चाहिए, दो साल तो दूध पिलाना है, उसके बाद दूध से उसको मुंतकिल करना है दूसरी गजा की तरफ, तो उसके लिए भी एक साल चाहिए। तो ये कुल कितने हो गए? तीन साल। तो कहते हैं, वला बुद्द मिन ज्यादती अलल हौलैन लिमा नुबय्यिनु, और दो साल पर ज्यादती जरूरी है उस वजह से जो हम बयान करेंगे, फयुकद्दरु बिही, तो इसका इस एक साल के साथ अंदाजा लगाया जाएगा। वलहुमार साहिबैन की दलील जो है, कौलुहु ताला, वल्लाह ताला का यह कौल है, वह हमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरा, वह हमलुहू और इसका हमल जो है, वह फिसालुहू और इसका दूध छुड़ाना जो है, सलासून शहरा, तीस महीने हैं। फिसाल, फिसाल का माना है दूध छुड़ाना। साहिबैन फरमाते हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हमलो फिसाल की मुद्दत तीस महीने जिक्र की है। वह हमलुहू व फिसालुहू सलासून शहरा, कि इस बच्चे का हमल और इसका दूध छुड़ाना तीस महीने है। और आप पढ़ चुके हैं कि कम से कम छह माह के अंदर एक सही सलामत बच्चे की पैदाइश हो सकती है। तो हमल की कम से कम मुद्दत कितनी है? छह माह है। छह माह के अंदर एक सही सलामत बच्चे की पैदाइश हो सकती है। तो साहिबैन फरमाते हैं कि ये जो तीस महीने हैं, ये हमल और फिसाल दोनों की मुद्दत अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। हमल और फिसाल यानी दूध छुड़ाना, यह हमल और दूध छुड़ाने दोनों की मुद्दत तीस महीने है, और हमल की तो कम से कम मुद्दत कितनी है? छह महीने। लिहाजा इस तीस महीने में से छह महीने निकाल दो तो कितने रह गए? दो साल। मालूम हुआ ये जो तीस महीने जिक्र हुए इसमें छह महीने हमल के हैं और चौबीस महीने यानी दो साल वो फिसाल के हैं, यानी दूध छुड़ाने और दूध पिलाने के हैं। तो कहते हैं वलहुमा कौलुहू ताला, और साहिबैन की दलील अल्लाह ताला का यह कौल है, वह हमलुहू व फिसालुहू सलासून शहरा, और इस बच्चे का हमल और इसका दूध छुड़ाना वो 30 महीने है, वह मुद्दतुल हमली अदनाहा सित्तत अशहरीन, और मुद्दत हमल जो है उसकी कम से कम मकदार जो है वो 6 माह है, फबकिया लिल फिसाल हौलानी, तो दूध छुड़ाने के लिए बाकी 2 साल रह गए, तो 2 साल मुद्दत रजाअत है भाई। वकाल, और नीज वो हदीस जिक्र करते हैं, कहते हैं वकाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला रिजा बाद हौलैन, 2 सालों के बाद कोई रिजाअत नहीं है। तो देखो इस हदीस में 2 साल के बाद रिजाअत की नफी की गई है, मालूम हुआ मुद्दत रिजाअत कितनी है, 2 साल है। नीज कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वफिसालुहु फी आमैन, वफिसालुहु फी आमैन, और इस बच्चे का दूध छुड़ाना 2 साल के अरसे में होगा। देखो यहां पर भी 2 साल का जिक्र है कुरान में, और नीज दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं वल वालिदातु युर्ज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, और वालिदाएं जो हैं वो अपनी औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाएं भाई। तो इसके अंदर भी 2 साल का जिक्र है। तो साहिबैन फरमाते हैं साबित हो गया कि मुद्दत रजाअत 2 साल है। बात समझ में आ गई। व लहू, अब इमाम साहब की दलील आ गई, व लहू, और इमाम साहब की दलील जो है हादिहिल आयतु, यही आयत है। इमाम साहब भी दलील में यही आयत जिक्र फरमाते हैं, कौन सी आयत, व हमलुहू व फिसालुहू सलासून शहरा। इमाम साहब फरमाते हैं देखो यहां 2 चीजें जिक्र हैं, हमल और फिसाल, हमल और फिसाल, और दोनों की मुद्दत सलासूना शहरन जिक्र की गई है, और यह तकाजा करता है, यह तकाजा करता है कि इस सलासूना शहरन को दोनों में तकसीम न किया जाए, बल्कि हर एक के लिए यह पूरी पूरी मुद्दत साबित हो। यह इसी तरह है जैसे कि शख्स जो है वह अपने दुयून की मुद्दत बयान करता है, मसलन एक शख्स है उसने मेरे 1000 दिरहम भी देने हैं और मेरे उसने 100 कफीज गंदुम भी देनी है, तो अब मैं उससे कहता हूं कि आपके पास ये 1000 दिरहम और ये 100 कफीज गंदुम के लिए 6 माह का वक्त है, आपके लिए 1000 दिरहम और 100 कफीज गंदुम के लिए 6 माह का वक्त है, तो 2 दुयून के साथ मैंने मुद्दत जिक्र कर दी। तो इसका क्या मतलब है मुझे आप बताइए भाई, एक शख्स दूसरे को कहता है आप पर मेरे 2 दैन हैं, आपने मेरे 1000 दिरहम भी देने हैं और 100 कफीज गंदुम भी देनी है, तो वो कर्ज खा उसको कहता है कि आपके पास ये जो 2 दैन हैं इनके लिए आपके पास 6 महीने की मुद्दत है, तो इसका क्या मतलब है उस मुद्दत को इन दोनों दुयून में तकसीम करेंगे या हर दैन के लिए पूरी पूरी मुद्दत होगी। जाहिर सी बात है इसका यह मतलब तो नहीं होगा कि 1000 दिरहम के लिए भी 3 महीने हैं और 100 कफीज के लिए भी 3 महीने हैं, इसका यह माना कोई भी नहीं लेता, बल्कि इसका क्या माना लिया जाता है कि दोनों के लिए 1000 दिरहम के लिए भी 6 महीने हैं आपके पास और 100 कफीज गंदुम के लिए भी 6 महीने हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर भी कुरान के अंदर हमल और फिसाल 2 चीजें जिक्र हैं और दोनों के आगे एक मुद्दत जिक्र है सलासून शहरन, तो ये सलासून शहरन को इन दोनों में तकसीम नहीं करेंगे बल्कि दोनों के लिए पूरे पूरे सलासून शहरन साबित हो जाएंगे। मालूम हुआ हमल की मुद्दत भी 30 महीने और मालूम हुआ फिसाल की मुद्दत भी 30 महीने यानी 2.5 साल है जी। दलील समझ में आ रही है इमाम साहब की जी। तो कहते हैं वलहू, इमाम साहब की दलील जो है हादिहिल आयतु, यही आयत है, ववजहू, और वजह इसकी यह है कि अन्नहु ताला दकर शैअइनी, कि अल्लाह ताला ने 2 चीजों को जिक्र फरमाया, एक हमल और एक फिसाल, वज़रब लहुमा मुद्दतन, और बयान किया अल्लाह ताला ने इनके लिए एक मुद्दत को, ज़रब का माना बयान करना भी है, वज़रब लहुमा मुद्दतन, और अल्लाह ताला ने इनके लिए मुद्दत बयान फरमाई, फकानत लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बिकमालिहा, तो इन दोनों में से हर एक के लिए यह कामिल मुद्दत होगी, हर एक के 30 महीने होंगे। कल अजलिल मजरूबी लिद दैनैनी, जैसे वो मुद्दत जो बयान की जाए, लिद दैनैनी दो दैनों के लिए, वो मुद्दत जो दो दैनों के लिए बयान की जाए, इल्ला अन्नहु कामल मुनक्किसु फी अहदिहिमा, हां एक के हक में मुनक्किस दलील आ गई, नक्कस युनक्किसु तनकीस का माना कमी करना। भाई याद रखो, हदीस में आता है हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कोई भी बच्चा मां के पेट में दो साल से ज्यादा नहीं रह सकता, चाहे मामूली सा वक्त ही क्यों ना हो। यानी कोई भी बच्चा मां के पेट में दो साल से जायद कतअन नहीं रह सकता। भाई तो ये हदीस के अंदर आता है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, और ये बात किसी इंसान को अकल से पता नहीं चल सकती, तो यकीनन उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना होगा। बात समझ में आ गई। तो यह हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है, लेकिन यह भी हदीस मरफूअ के दर्जे में है, क्योंकि यह बात अकल से मालूम नहीं हो सकती कि कोई बच्चा दो साल से ज्यादा मां के पेट में नहीं रह सकता, तो यह हदीस मरफूअ के दर्जे में है। इससे पता चल गया कि हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत दो साल है। हमल की कम से कम मुद्दत कितनी है? छह माह, जिसमें एक सही सलामत बच्चा हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत कितनी है? दो साल, बच्चा ज्यादा से ज्यादा दो साल मां के पेट में रह सकता है, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं रह सकता भाई जी। तो लिहाजा आयत के अंदर तो क्या आया, हमलुहू व फिसालुहू सलासूना शहरन, मालूम हुआ हमल के भी तीस महीने यानी ढाई साल, और फिसाल यानी दूध छुड़ाने के भी तीस महीने यानी ढाई साल। लेकिन हमल के बारे में एक और दलील आ गई कि हमल की मुद्दत दो साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आयत से तो क्या अंदाजा हुआ कि हमल की मुद्दत भी ढाई साल है भाई जी। आयत से तो क्या साबित हुआ, मुद्दत दोनों की बयान हो रही है, लेकिन एक और दलील आ गई जिसने बताया कि हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत दो साल हो सकती है। तो लिहाजा हमल की मुद्दत तो दो साल करार दे दी जाएगी, लेकिन फिसाल की मुद्दत तो उसी तरह तीस माह ही रहेगी, वहां पर कोई कम करने वाली दलील नहीं आई भाई। तो आपके जहन में यह इश्काल ना आए भाई कि आयत से तो पता चल रहा है हमल की मुद्दत तीस महीने है, कितनी? तीस महीने है, और आप हदीस को तरजीह दे रहे हैं किताबुल्लाह पर भाई। हदीस के अंदर तो दो साल की मुद्दत है, और आप भी क्या कह रहे हैं, दो साल। तो जवाब यह कि भाई यहां कोई आयत से कतई तौर पर यह पता नहीं चल रहा कि हमल और फिसाल दोनों की तीस तीस महीने मुद्दत है। अगर कतई तौर पर यह पता चलता कि दोनों की मुद्दत तीस तीस महीने है, तो साहिबैन भी इसी तरफ जाते। हालांकि साहिबैन तो किस तरफ गए हैं कि दोनों की मिलाकर मुद्दत तीस महीने है। तवज्जो है, मालूम हुआ यहां पर जो इमाम साहब ने आयत का माना निकाला है वो कोई कतई नहीं है, लिहाजा दूसरी दलील के जरिए उसमें कमी हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा हमल की मुद्दत तो ज्यादा से ज्यादा दो साल हुई, लेकिन दूध छुड़ाने की मुद्दत के लिए तो कोई कमी वाली दलील मौजूद नहीं है, लिहाजा वो ढाई साल ही शुमार की जाएगी। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु कामल मुनक्किसु फी अहदिहिमा, मुनक्किस कम करने वाला यानी कम करने वाली दलील, इल्ला अन्नहु कामल मुनक्किसु फी अहदिहिमा, मगर यह कि इन दोनों में से एक के हक में कमी वाली दलील आ गई, यानी हमल के बारे में कमी वाली दलील आ गई। फबकिया सानी अला जाहिरी ही, तो दूसरा जो है वह अपने जाहिर पर ही बाकी रहेगा, यानी फिसाल के तीस महीने ही होंगे, यानी मुद्दत रजात ढाई साल ही होगी। वली अन्नहु लाबुद्द मिन तगय्युरिल ग़ज़ाई, अब वही अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं, इमाम साहब के नजदीक मुद्दत रजात ढाई साल है, ढाई साल है। वो फरमाते हैं कुरान के अंदर जो दो साल का जिक्र है या हदीस के अंदर जो दो साल का जिक्र है, इसका मतलब यह है कि यह दो साल तो रजात बच्चे का हक है। वल वालिदात युर्ज़िअन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, कि दो साल दूध पिलाना यह तो बच्चे का हक है जी। लेकिन उसके बाद कुछ मुद्दत चाहिए जिसमें बच्चे का दूध छुड़ाया जा सके और उसको रोटी पर लगाया जा सके, और इसका अंदाजा इमाम साहब ने छह माह के साथ लगाया है। यह अकली दलील चल रही है इमाम साहब की, पहले नकली दलील थी, आयत से साबित हो रहा था, अब अकली दलील कि दो साल तो बच्चे का हक है लेकिन कुछ मुद्दत मजीद भी होनी चाहिए जिसमें बच्चे का दूध छुड़ाया जाए और उसे रोटी पर लगाया जाए, और इसका अंदाजा 6 माह के साथ लगाया इमाम साहब ने, तो 2 साल और 6 माह ये 30 महीने हो गए, यानी 2.5 साल हो गए। और 6 माह के साथ अंदाजा क्यों लगाया? कहते हैं इसलिए क्योंकि हमल की अदना मुद्दत 6 माह है। 6 माह में एक बच्चा सही सलामत पैदा हो सकता है, 6 माह में बच्चा सही सलामत पैदा हो सकता है। मालूम हुआ 6 माह की मुद्दत काफी है एक गजा से दूसरी गजा की तरफ मुंतकिल होने के लिए। 6 माह की मुद्दत काफी है एक गजा से दूसरी गजा की तरफ मुंतकिल होने के लिए। जैसे ये बच्चा जब मां के पेट में था तो जो मां की खुराक थी वही इसकी खुराक थी, तो उस वक्त बच्चे की गजा और थी, जो मां की गजा वही बच्चे की गजा, और अब जब दूध पिएगा तो बच्चे की गजा बदल गई। और कम से कम हमल की मुद्दत कितनी है? 6 माह। तो जनीन जो मां के पेट में था उसकी गजा और थी, और 6 माह के अंदर एक सही सलामत बच्चा हो सकता है। मालूम हुआ 6 माह गजा के बदलने के लिए काफी हैं। 6 माह के बाद देखो फौरन उसको उखालिस दूध उसकी गजा बन गई। तवज्जो है, जनीन की गजा वही है जो मां की गजा। आप उसके बाद इसकी गजा क्या बनने वाली है? खालिस दूध, सिर्फ दूध अब ये पिएगा और कोई चीज नहीं खाएगा। तो 6 माह के अंदर देखो अब जनीन की पैदाइश हो गई और उसकी गजा बदल गई। पहले गजा और थी अब गजा, तो देखो ये 6 माह गजा के बदलने के लिए काफी हैं। तो कहते हैं वली अन्नहु लाबुद्द मिन तगय्युरिल गजाई, और जरूरी है गजा का बदलना भी। लियन कतियाल इम्बात उबिल्ला बनी, ताकि दूध के जरिए जो नशो नुमा है वो मुनकतिया हो जाए। इम्बात का यहां क्या तर्जमा करेंगे? नशो नुमा। तो कहते हैं वली अन्नहु लाबुद्द मिन तगय्युरिल गजाई, और जरूरी है गजा का बदलना। लियन कतियाल इम्बात उबिल्ला बनी, ताकि दूध के जरिए जो नशो नुमा थी वो मुनकतिया हो जाए। वदालिका भी ज्यादती मुद्दतीन यतअव्वदुस्सबीयुफीहा गैरहू, वजाली का भी ज्यादती मुद्दतीन, और वो इस तरह होगा कि ऐसी मुद्दत बढ़ा दी जाए। यह तअव्वदु सभी यूफीहा, कि जिसके अंदर बच्चा आदि हो जाए गैरहू दूध के अलावा का, तो इतनी मुद्दत बढ़ानी पड़ेगी जिसमें बच्चा दूसरी गजा का आदि हो जाए। तो कहते हैं वजाली का भी ज्यादती मुद्दतीन यतअव्वदु सभी यूफीहा गैरहू, और यह गजा का बदलना जो है एक ऐसी मुद्दत के बढ़ाने के जरिए होगा कि जिसके अंदर बच्चा दूध के अलावा का आदि हो जाए। तर्जमा समझ में आ रहा है? फकुद्दिरत भी अदना मुद्दतिल हमली, तो इसका अंदाजा लगाया गया अदना मुद्दत हमल के साथ। लिअन्नहा मुगय्यिरतुन, क्योंकि यह भी गजा को बदलने वाली है। फइन्ना गदा अल जनीनी युगायुरु गजा अर रजीई, जनीन वो हमल वो बच्चा जो मां के पेट में है, रजी वो जो दूध पी रहा है, और आगे एक लफ्ज आ रहा है फतीम भाई, फतीम वो बच्चा जिसका दूध छुड़ाया जा रहा है। तो देखो जो जनीन था जो मां के पेट में है उसकी गजा, और रजी जो दूध पी रहा है उसकी गजा दूध है, और जो फतीम है उसको कभी दूध पिलाया जाता है और कभी रोटी खिलाई जाती है। तवज्जो है, तो फतीम की गजा और है। तो कहते हैं फइन्ना गजा अल जनीनी युगायरु गजा अर रजीई, इसलिए क्योंकि जनीन की गजा जो है वो मुगायर होती है, वो मुख्तलिफ होती है रजी की गजा से। कमा युगायरु गजा अल फतीमी, जैसे कि वो फतीम जिसके यानी जिसका दूध छुड़ाया जा रहा है जैसे कि उसकी गजा मुख्तलिफ होती है। तो इमाम साहब फरमाते हैं 2 साल ये तो बच्चे का हक है, और उसके बाद भी कुछ मुद्दत चाहिए जिसमें बच्चे का दूध छुड़ाया जाए, और उसका अंदाजा इमाम जुफर ने 1 साल के साथ लगाया और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 6 माह के साथ लगाया है। वल हदीस महमूल अला मुद्दत इस्तेहकाकी, और यह हदीस महमूल है मुद्दत इस्तेहकाक पर। भाई साहिबैन की दलील आई थी, साहिबैन ने हदीस भी जिक्र की थी ला रिजा बाद हौलैनी, 2 साल के बाद रिजात नहीं है। तो इसका जवाब दे रहे हैं, कहते हैं वल हदीस महमूल अला मुद्दत इस्तेहकाकी, और यह हदीस महमूल है इस्तेहकाक की मुद्दत पर। यानी माना यह है, इसके 2 माना बयान किए उलमा ने, कि इस हदीस के अंदर मुद्दत इस्तेहकाक को बयान किया गया है, यानी 2 साल दूध पीना तो बच्चे का हक है, दो साल दूध पीना तो बच्चे का हक, तो इसमें मुद्दत इस्तेहकाक बयान की गई है। जबकि बाजों ने यहां इस्तेहकाक का और माना किया, वो फरमाते हैं इस्तेहकाक से मुराद है मां का उजरत का मुस्तहिक होना। भाई बाज औकात औलाद पैदा हुई और फिर बाद में मियां बीवी के दरमियान किसी वजह से झगड़ा आया और खावन ने बीवी को तलाक दे दी, अब दोनों में जुदाई आ गई। अब देखो वो बच्चा छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, और अब मां खावंद से मुतालबा करती है कि तुमने मुझे तलाक दे दी है, अब तुम्हारे बच्चे को मैं उसी वक्त दूध पिलाऊंगी अगर तुम मुझे उजरत दोगे। तो वो मां दूध की उजरत का मुतालबा कर सकती है और खावंद को वो उजरत देना पड़ेगी। भाई तवज्जो है जी, तो खावंद को वो उजरत देना पड़ेगी। अब याद रखो उलमा फुकाहा फरमाते हैं कि दो साल की मुद्दत तक ये औरत उजरत की मुस्तहिक है। दो साल की मुद्दत के अंदर अंदर बच्चे को दूध पिला रही है तो ये उजरत की मुस्तहिक है, दो साल के बाद बिल इत्तेफाक ये उजरत की मुस्तहिक नहीं, उसके बाद इसको उजरत नहीं दी जाएगी। भाई तो यहां जो इस्तेहकाक का लफ्ज आया कहते हैं इससे वो उजरत की मुद्दत का इस्तेहकाक बयान हो रहा है। किस तरह? देखो हदीस में क्या आया था, ला रिजा बाद हौलैनी, दो साल के बाद रिजात नहीं है, मतलब यह है कि दो साल के बाद औरत अब उजरत की मुस्तहिक नहीं है। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल हदीस महमूल अला मुद्दत इस्तेहकाकी, और यह हदीस महमूल है इस्तेहकाक की मुद्दत पर, कि यानी इतनी मुद्दत तक औरत उजरत की मुस्तहिक है। व अलैहि युहमल नस्ल मुकय्यद बिहौलैनी फिल किताबी, और इसी पर महमूल है वो नस। भाई मैंने बताया नस किसे कहते हैं, कुरान और हदीस को। तो कुरान में भी तो जिक्र आया है वल वालिदात युर्ज़िअन औलादहुन्न हौलैन कामिलैन। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि मुद्दत रिजात 30 महीने हैं, 2.5 साल हैं, जबकि कुरान में तो क्या आया है वल वालिदात युर्ज़िअन औलादहुन्न हौलैन कामिलैन, यहां तो 2 साल का जिक्र है। तो उसका भी जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया के कुरान के अंदर जो 2 साल जिक्र हैं वो इस्तेहकाक के जिक्र हो रहे हैं, ये बच्चा 2 साल दूध पीने का मुस्तहिक है, या ये औरत 2 साल तक उजरत की मुस्तहिक है, रिजात 2 साल तक है। भाई तो ये जो 2 साल कुरान में जिक्र हुए ये भी इसमें भी इस्तेहकाक की मुद्दत बयान की जा रही है। और कहते हैं दलील इसकी ये है कि इसी के बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं फइन अरादा फिसालन अन तराज़िन, फइन अरादा के पहले क्या जिक्र किया कि मैं अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं, आगे अल्लाह फरमाते हैं फइन अरादा फिसालन, फिर अगर इन दोनों ने इरादा किया फिसालन दूध छुड़ाने का, यानी मियां बीवी ने अब दूध छुड़ाने का इरादा किया अन तराज़िन बाहमी रजामंदी से, फिर उसके बाद अगर इन्होंने दूध छुड़ाने का इरादा किया बाहमी रजामंदी से, देखो फा फा आ रही है और फा किस लिए आती है, ताकीब माल वसल के, मालूम हुआ ये 2 साल के बाद का हुक्म बयान हो रहा है जी। 2 साल दूध पिलाएं फिर उसके बाद अगर वो बाहमी रजामंदी से दूध छुड़ाना चाहें, मालूम हुआ उसके बाद भी दूध पिला सकती है। अगर उस वक्त दूध छुड़ाना लाजिम होता तो अल्लाह ये ना फरमाते अगर ये इरादा करें दूध छुड़ाने का, फिर तो हुक्म होना चाहिए था आगे दूध पिला ही नहीं सकते। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे हैं 2 साल मैं दूध पिलाएं फिर उसके बाद अगर ये दूध छुड़ाने का इरादा करें, मालूम हुआ 2 साल से जायद की बात अब चल रही है जी। तो ये जो 2 साल जिक्र हुए ये किसके थे, इस्तेहकाक के जिक्र हुए थे, ये मुद्दत रजात का जिक्र नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वअलैहि युहमलु नस्ल मुकय्यद बिहौलैन फिल किताबी, और इसी पर महमूल है वो नस जो मुकय्यद है हौलैन के साथ, यानी 2 सालों के साथ, फिल किताबी किताबुल्लाह के अंदर। भाई वो नस जो किताबुल्लाह में है और मुकय्यद है हौलैन के साथ, वो भी इसी इस्तेहकाक पर महमूल है। दलील समझ में आ गई अच्छी तरह। तो इमाम साहब के नजदीक मुद्दत रजात 2.5 साल है और साहिबैन के नजदीक मुद्दत रजात 2 साल है। और याद रखिए यहां फतवा साहिबैन के कौल पर है, फतवा साहिबैन के कौल पर है, 2 साल मुद्दत रजात है और 2 साल बच्चे को माएं दूध पिलाएं, 2 साल से जायद दूध पिलाना जायज नहीं। और जबकि इमाम साहब के नजदीक तो मुद्दत रजा 2.5 साल है। तो बाज़ उलमा ने इन दोनों अकवाल में तत्बीक दी कि बच्चे को दूध पिलाने का मसला हो तो साहिबैन के कौल पर फतवा दिया जाएगा कि 2 साल से जायद दूध मां नहीं पिला सकती, 2 साल ही पिला सकती है। और अगर हुरमत का मसला हो तो अगर 2.5 साल तक भी किसी औरत ने बच्चे को दूध पिला दिया है तो हुरमत को साबित माना जाएगा। एहतियात इसी में है क्योंकि हलाल और हराम होने का मसला है। और एहतियात किसमें ज्यादा कि 2.5 साल में भी अगर बच्चे ने दूध पिया है तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जैसे जलीलुल कदर फकीह जो है वो 2.5 साल तक मुद्दत रजात करार दे रहे हैं। तो 2.5 साल में भी अगर कोई बच्चा दूध पी लेता है तो वहां भी हुरमत वाला हुक्म लगाया जाए। एहतियात इसी में है। बात समझ में आ गई। तो रजात 2 साल करार दी जाएगी और हुरमत का मसला आया तो वो 2.5 साल तक भी साबित हो जाएगी। हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम। अच्छा।